ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस और रिट्रीट माउंट आबू ज्ञान सरोवर में आयोजित सुबह के उद्घाटन सत्र के पश्चात सायंकालीन प्लेनरी सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज के सत्र की शुरुआत हम करें। आज के प्लेनरी सेशन के मंचस्थ महानुभावों को मैं मंच पर पधार कर इस मंच की गरिमा को बढ़ाने के लिए विशेष आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सुशांत भाई, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर दिल्ली से। साथ में आज हमारे विशेष अतिथि ब्रदर शिल शुक्ला जी, एडिटर इन चीफ विजडम इंडिया डेली एंड न्यूज चैनल गाजियाबाद। सिस्टर सुषमा शर्मा जी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी से हमारे मध्य पहुंचे हैं। भ्राता कुलदीप सिंह जी, आप भी प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो में फॉर्मर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे, दिल्ली से हमारे बीच हैं। आपको भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी, चंडीगढ़ से आप जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग के पद पर अपनी वर्तमान समय सेवाएं दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे जी, असिस्टेंट प्रोफेसर जलगांव से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपको भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुरेश भाई वर्मा, प्रोफेसर रेडियो इंचार्ज MCRC दिल्ली से। डॉक्टर ब्रह्मा कुमार गंगाधर भाई, एडिटर ओम शांति मीडिया न्यूज शांतिवन आबू रोड। ब्रदर अरुण नथानी, असिस्टेंट एडिटर दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़। और बीके ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई, नॉर्थ गुजरात कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग गुजरात से डीसा। इन सभी महानुभावों का हम करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज के हमारे इस प्लेनरी सेशन के विशिष्ट वक्तागण जिन्हों का अपने अपने क्षेत्र में विशेष अनुभव रहा है, विशेषता संपन्न आज यह मंच हमें अपनी विशेषताओं अपने विचारों से मिलेनिस्ट मीडिया समाज की स्थापना करने हेतु हमें मदद करेंगे। सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन और सभी श्रोतागणों से भी मेरा नम्र अनुरोध है कि हम काफी आगे पीछे हैं, तो सभी जितना हो सके उतना आगे आएंगे और एक साथ बैठेंगे तो आपकी सभा की भी शोभा एक बनी रहेगी। जो सभी पीछे बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, तो आगे सभी आ जाइए। जो पीछे वाले वो भी सभी कृपया आगे आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ताकि बाद में आने वाले लोग भी आपके बाद वाली सीट पर बैठेंगे और आप सभी जितने आगे होंगे उतना नजदीक का अनुभव होगा, वाइब्रेशन आप कैच कर सकेंगे। तो आज के प्लेनरी सेशन की शुरुआत करते हैं एक नए विषय के साथ, सामाजिक हित के लिए मीडिया में उभरते हुए नए रुझानों का मार्गदर्शन, नेविगेशन न्यू ट्रेंड्स इन द मीडिया फॉर सोशल बेनिफिट्स। इसके लिए हम विचार साझा करेंगे इन मंच के द्वारा। तो आइए हम आज के कार्य की शुरुआत प्रभु पिता की मधुर स्मृति से करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के कार्य का परमात्मा की मधुर याद से। हम सभी परमात्मा का आह्वान करेंगे और चलो परमात्मा की याद में।
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
चाहे तो सबके लिए हो सुखमय संसार।
मीडिया का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए। हमेशा मीडिया के कार्य की सराहना भी होती है और कहीं कहीं मीडिया को कुछ देखना भी पड़ता है। तो ऐसे समय में मीडिया के माध्यम से समाज के हित के लिए क्या नया हम करें, कई नई बातों को, नए विचारों को समाज के हित के लिए रखें, इन विचारों को हम आज के अनुभवी वक्तागणों से साझा करेंगे। आज के हमारे इस मंच की शोभा विद्वजनों से है, तो मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की हमारी समर्पित बहनों से अनुरोध करती हूँ, बड़ौदा से पधारी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें आज के मंचस्थ महानुभावों का पुष्प गुच्छ बैज और अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे, स्वागत करेंगे और अभिवादन करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच है ब्रदर कुलदीप सिंह जी, दातीवाला जी, साथ साथ में ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन, ब्रह्मा कुमार गंगाधर भाई, डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे जी, डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा जी, शशिकांत भाई डीसा से, हम सभी करतल ध्वनि से मंच के महानुभावों का स्वागत हो रहा है, तो स्वागत की श्रृंखला में जुड़ेंगे। साथ साथ में शील शुक्ला जी का स्वागत हो रहा है, बहन सुषमा शर्मा जी का भी अभिवादन हो रहा है। भारतीय संस्कृति बहुत महान संस्कृति है, इस संस्कृति का गायन देश विदेश में है। जहाँ मेहमानों का अभिवादन होता है, स्वागत होता है, सत्कार होता है, तो उन महानुभावों की विशेषता को परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो आज इस पवित्र दिव्य स्थल में जब ऐसे विद्वत जन पहुँचे हैं और कुछ नए विचारों को यहाँ मनन चिंतन करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के सत्र के द्वारा समाज को एक नया फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा और हम सभी मीडिया कर्मी मिलकर के समाज के लिए कुछ विशेष नए कदम उठाने में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो आज की हमारे इस मंच की विशेषताओं को देखते हुए इस विषय का हम सभी मनन चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के सत्र में सभी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई को। आप गुजरात के डीसा शहर से हैं और नॉर्थ गुजरात की मीडियाओं की सेवाओं को आप पिछले 45 वर्ष से देखते हैं। गुजरात के विभिन्न अखबारों में 15,000 से भी ज्यादा आपके न्यूज कवर हुए हैं। प्रतिदिन आपके 55 से भी ज्यादा अखबारों में आध्यात्मिक समाचारों का संकलन आता रहता है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि स्वागत उद्बोधन करें ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई।
ओम शांति। इस महत्वपूर्ण आज के सेशन में सबसे पहले मैं परमपिता शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हुए आप सभी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में 1978 में पहली बार आया और इसका जो ज्ञान का अध्यात्म कोर्स होता है वो सारा हमने पूरा किया और उसी तीसरे ही दिन मेरे को जो अनुभव हुआ, तो मैं इस संस्था से उस समय से जुड़ा हुआ हूँ और उसी समय से मैं लिखना, मेरे को बहुत शौक था लिखने का, तो उसी समय से मैं लिखता हूँ। और जब भी मैं पहली बार माउंट आबू आया तो हमारी उसी टाइम दादी प्रकाशमणि जी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी थी, आप सभी ने कईयों ने देखा होगा दादी जी को। आते ही दादी जी का इतना प्यार मिला, इतना उसने आगे बढ़ाने के लिए उसकी शुभकामना दी कि मेरी कलम में एक ताकत भर गई। उसी दिन से मैंने सारे पॉजिटिव सारी बातें लिखना, अच्छे अच्छे समाचार लिखना शुरू किया और वो आज तक शुरू है। आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है। आज सुबह भी भाई साहब अखबार बता रहे थे, हम बार बार लिखते हैं कि विश्व में महिला संचालित अध्यात्म संस्था ब्रह्मा कुमारी जी, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। अभी अभी हमारे दिल्ली में बहुत बड़ा महामंडलेश्वर और का संत सम्मेलन हुआ, करीब 250 महामंडलेश्वर पहुंचे उसमें। तो जब उसको बताया गया कि हमारे यहाँ 50,000 बहनें समर्पित रूप से कार्य कर रही है, 50,000 बहनें और 182 देशों तक बहनें पहुंची है, 140 देशों में सेंटर सभी चल रहा है, उन्होंने बोला कि हमने आज तक सनातन संस्कृति को टिकाने के लिए शास्त्रों के आधार पर पूरे भारत को थमाया, बहुत सेवाएं की, लेकिन ये कलयुग के अंत में हम ऐसे ऐसे सीन देख रहे हैं। तो हम सारे साधु संतों, समाज में भी एक चर्चा हो रही थी कि आगे क्या होगा, हम अपनी संस्कृति कैसे बचाए, क्योंकि आप सब जानते हो कैसे कैसे रोज हिंसा क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। और ऐसे समय पर जो ये दिल्ली में आपने जो सम्मेलन बुलाया और हमको आपने बताया कि हमारे पास 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें पूरे विश्व भर में ये कार्य कर रही है और सारी बहनें भारत की है, तो अभी हमको गौरव हो रहा है, अभी हम निश्चिंत हो गए कि हमारे साथ 40-50,000 बहनें हैं तो भारत की रक्षा होनी ही है, भारत में स्वर्ग स्थापन करना ही है और सारे समाज को सकारात्मक बनाना ही है। तो आप सब उस भूमि में अभी बैठे हो जहाँ का कण कण में एक ऊर्जा है। यहाँ दादियों की तपस्या रही 14 साल तक, तपस्या के बाद जब माउंट आबू 1950 में ब्रह्मा कुमारी बहने आई तब कुछ नहीं था, सिर्फ पांडव भवन था जो आपने देखा होगा या अभी देखेंगे। तो आप जब तक यहाँ हो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक एक मिनट का आप एक लाभ लेना, तपस्या का, योग का, अपने उत्थान का और जो भी कुछ हमारे में कुछ कमी कमजोरी है वो सुहा करने का आप सभी संकल्प करेंगे। आज के सेशन में आप सभी का सम्मान करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। हमारे बीच में ब्रदर अरुण नैथानी जी, माननीय बीके डॉक्टर गंगाधर भाई जी, माननीय सुरेश वर्मा जी, डॉक्टर सोमनाथ जी, वडनेरे जी, बीके पूनम दीदी जी, शील शुक्ला जी, सिस्टर सुषमा शर्मा जी, ब्रदर कुलदीप सिंह दत्तवालिया और बीके सुशांत भाई जी, आप सभी को सम्मानित स्टेज पे हम बहुत बहुत आपका स्वागत सम्मान करते हैं। और आप सभी भाई बहनें जो भी यहाँ उपस्थित है आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पिछले 30 साल से ये मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले शांतनु भाई ने मेरे को बोला था जब 30 साल पहले कि हमको मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप गुजरात से कुछ पत्रकारों को लाओ। तो मैं एक बहुत बड़े पत्रकारों को मैंने फोन किया कि भाई जी आपको भी आना है। बोला कितने घंटे के लिए प्रोग्राम है? मैंने बोला घंटे का नहीं है, 3 दिन का है। बोला भाई साहब आपको कभी पत्रकारों के बारे में मालूम है? 2 घंटे के लिए 10 पत्रकारों को संभालना बहुत मुश्किल है और आप इतने इतने पत्रकारों को बुला रहे हो। उन्होंने बोला भाई जी ये भगवान का घर है, एक बार आप आके तो देखो। ऐसे ऐसे करके 5, 10, 15, 20 ऐसे करके ये सम्मेलन शुरुआत हुई। और आप सब जानते हो कि विश्व में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इतने सारे पत्रकारों को इकट्ठा करके इतना अच्छी तरह से रखे, सभी को अपना परिवार मान के चले और सभी के सहयोग से विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए सबको सहयोगी बनाए। तो उसमें से भगवान के चुने हुए आप सब महानुभाव, आप सब मुरब्बी, बड़े पत्रकार भाई बहने हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान। ओम शांति।
शशिकांत भाई का भी हम सभी मिल करके स्वागत करते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए आपका बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। लंबे अरसे से मीडिया प्रभाग से जुड़े हैं और बहुत दिल से अपनी लेखनी के माध्यम से पत्रकारों की भी सेवा करते हैं, मीडिया जगत की सेवा करते हैं और आम जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे शशिकांत भाई का भी बहुत बहुत स्वागत। आज के सत्र का विषय बहुत ही सुंदर है और इस विषय को खोलने के लिए आज के सत्र की कीनोट स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रदर अरुण नथानी जी को। आप चंडीगढ़ से हमारे मध्य हैं और आप असिस्टेंट एडिटर दैनिक ट्रिब्यून में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विशेष आप पिछले 40 वर्ष से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप एडिटोरियल राइटिंग, रिपोर्टिंग, फीचर क्रिएशन और पेज डिजाइनिंग में आपकी विशेष कला है और उससे पूर्व आपने अमर उजाला में एवं विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। 10,000 से भी ज्यादा आपने एडिटोरियल फीचर्स एवं इंटरव्यू बुक रिव्यूज आपने किए हैं। 3,000 से भी ज्यादा आपके कार्य को प्रकाशन विभिन्न लीडिंग न्यूज़पेपर्स में हुआ है। तो ऐसे विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तित्व भ्राता अरुण जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आज के इस सत्र के लिए आप कीनोट स्पीच रखेंगे। भ्राता अरुण जी।
ओम शांति। हम लोग परसों जब चंडीगढ़ से पहुंचे, अब रोड पर पूनम दीदी भी हमारे साथ थी, तो रास्ते से गुजरते हुए मैं सोच रहा था कि जब मोहनी दीदी और बाबा जब इस माउंट आबू पहुंचे होंगे, इस बियाबान जंगल में, और कैसे शुरुआत हुई होगी, कितना जटिल रहा होगा वो समय। माना ये एक तपस्थली थी लेकिन उतनी जटिलताओं से थी। आप जानते हैं कि पहाड़ में कुछ ही एक ईंट को ले जाना भी और उतना बड़ा उसको जोड़ना फिर एक बहुत कठिन काम है। तो मैं आज इस ज्ञान सरोवर को फलीभूत करने वाले तमाम योगिनी बहनों, ब्रह्म बहनों, भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जब एक सुंदर रचना हमारे सामने, एक सकारात्मक सोच को लिए हुए हमारे सामने आई है, तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम पत्रकारिता के एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। व्यवसायिता हावी है पत्रकारिता में। इससे पहले प्रिलिमिनरी सेशन में हम लोगों ने शांति की आवश्यकता पे बात किया और शिलुद्दीन ने उस तब कहा भी कि एक शांति हमारा मानवीय स्वभाव है, एक आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जब मैं देख रहा था तो 1936 में प्रजापिता ब्रह्म बाबा ने तब घोषणा की थी कि एक परमाणु युद्ध, जबकि तब उस समय में परमाणु जैसी कुछ घटनाएं तब थी भी नहीं, शोध इतने थे भी नहीं, लेकिन उन्होंने तभी घोषणा की थी कि आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण होगा। और जैसे कि देशों के बीचों में रूस अमेरिका के बारे में उन्होंने अशांति के जो आज जो हम देख रहे हैं ईरान में और आपका इसराइल और गाजा में जो संघर्ष देख रहे हैं उनकी उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अशांति जो थी हमारे समाज में जो उपजी है वो मानवीय स्वार्थों, मानवीय महत्वाकांक्षाओं और इन संघर्षों के बाद उपजी है। आज हम यहाँ एक पत्रकारिता के एक महत्वपूर्ण विषय पर मनन कर रहे हैं। ये हमारे लिए सुखद क्षण है कि इसी मई महीने में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो रहे हैं। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। तो उसके जो संपादक थे, ये कलकत्ता से अखबार प्रकाशित हुआ, तो उसके संपादक जुगल किशोर जी ने जो उसमें एक उन्होंने एक पंक्ति का उसमें उपयोग किया कि ये हिंदुस्तानियों के हित के हेतु है। तो उन्होंने पत्रकारिता के मर्म को बता दिया कि जो समाज के हित के लिए है, जैसे कि आज का हमारा विषय भी है, तो उसके अलावा पत्रकारिता कुछ हो ही नहीं सकती, उसमें अहित का भाव हो ही नहीं सकता। तो जब वो उद्घोष उनका था तो हमें जो है बाएं दाएं सोचने की आवश्यकता नहीं है, जहां समाज हित है वहीं पत्रकारिता है। मुझे 1992 की एक घटना याद आ रही है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में देश के बड़े चोटी के पत्रकार प्रभास जोशी जी जनसत्ता के संपादक थे, और बल्कि उसके साक्षी हमारे गोपाल जी भी हैं। 40 साल से हम लोग पत्रकारिता में सक्रिय हैं, तो गोपाल जी भी साक्षी हैं उस बात के। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकारिता एक ऋषि कर्म है। जैसे एक ऋषि समाज के हित के लिए योगदान देता है बिना किसी स्वार्थ के, और सच माने तो माउंट आबू में इस संस्थान में इस विश्वविद्यालय में जो भी कार्य हो रहा है वो एक ऋषि कर्म जैसा ही है। वो त्याग, उसमें तप है, त्याग है, हैं? कई तरह के कष्टों को झेलते हुए हम लोग समाज हित की बात करते हैं। तो दो बातें उन्होंने और बड़ी महत्वपूर्ण की, मुझे प्रभास जी की बात आज भी आती है। उन्होंने पिछले सेशन में सुविधाओं की, वेतन की बात हो रही थी, उन्होंने कहा भी ये पत्रकारिता का पैसा एक ऐसा पैसा है कि घर फूक तमाशा देखने वाला पैसा है। अगर बहुत सुख सुविधाओं में जीना है तो इस पैसे में आपको नहीं आना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि डेढ़ पेज की जो प्रेस नोट आपके पास आता है उसमें कहीं डेढ़ लाइन की खबर छिपी हुई है। जो पत्रकार उस डेढ़ लाइन की खबर को ढूंढ लेता है वो सही मायनों में पत्रकार वही है। तो हमारे जो दिग्गज पत्रकार थे, अगर आप आजादी की पत्रकारिता पर नजर डालें तो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो पत्रकारिता की अनुगूंज थी। उस समय किसी के सुख सुविधाओं का लोभ नहीं था। यहां मैं स्वराज अखबार का जिक्र करना चाहूंगा, इलाहाबाद से वो निकला था, 2.5 साल का उसका स्पान था और उसके संपादकों को 150 साल की सजाएं हुई हैं। कईयों को काला पानी हुआ, कईयों को फांसी हुई। वहां वेतन नहीं था, अखबार में विज्ञापन क्या छपता था कि जो जौ की रोटी है और एक नारियल के जो कटोरी होती है उसमें पानी मिलेगा, एक संपादक की जरूरत है स्वराज को, और लाइन लगी होती थी। तो एक जज्बा है, और हम लोग भी जब पत्रकारिता में आए तो इसको सोच के है कि हम कुछ समाज के लिए कर पाए। नौकरी करने के लिए तो बहुत सारे पैसे हैं, यह पत्रकार के हाथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है समाज में। आज जब हम तमाम तरह की जो विकृतियां देख रहे हैं वो व्यवस्था की विकृतियां हैं, और समाज में जो पराभाव है उसकी झांकी पत्रकार भी हमारे समाज से आता है, उसकी भी पारिवारिक आवश्यकताएं होती हैं, उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जब समाज में गिरावट है तो वो गिरावट लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में भी है और चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता में भी है। विडंबना ये है कि समय के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, और ये एक कृष्ण बिहारी मिश्र जी की किताब में मैं पढ़ रहा था, वो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि वो घोषणा कर दी थी कि आने वाले समय में अखबार बहुत रंगों में होंगे, सजे हुए होंगे, लेकिन उसमें पत्रकारिता की आत्मा कम नजर आएगी। और कमोबेश आज स्थितियां यही है। आजादी की बात देखिए, मैं जिस संस्थान से आता हूं, ट्रिब्यून से, सरदार दयाल सिंह मजीठिया एक बहुत बड़े विजनरी स्वतंत्रता संग्राम, लाहौर कांग्रेस के बारे में अगर सुना होगा तो उन्होंने वहां उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। वही व्यक्ति था जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, और ट्रिब्यून जब उन्होंने बनाया तो उसके ट्रस्ट में उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं रखा, ताकि मेरे पास ये ना लगे, आरोप ना लगे कि हम लोग किसी लाभ के लिए इसको काम कर रहे हैं। और आज मैं जब ट्रिब्यून में देखता हूं तो वहां जो समृद्धि एक अधिकारी के घर में दिखाई देती है, वही वो एक मैसेंजर चपरासी के घर में भी दिखाई देती है। कई मेरा जो चपरासी नीचे था वो इनकम टैक्स पे ही था, अभी भी है। तो ये संस्थान हमारा, मुझे तो गर्व होता है कि एक चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत शहर और वहां पे ट्रिब्यून जैसे संस्थान में मैं काम कर रहा हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। और वास्तव में कोई भी क्षेत्र हो वो त्याग और तपस्या मांगता है। जब मैं अपने घर से निकलने के लिए चंडीगढ़ के प्रेस क्लब को जाता हूं तो रास्ते में एक सुंदर सफेद बिल्डिंग चमकती होती है, डिवाइन हाउस के नाम से, जिसको रचने में पूनम दीदी ने अथक प्रयास करे। मुझे समय याद है अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने जो त्याग और तप से उस सुंदर और आध्यात्मिक इमारत को खड़ा किया, ये इस संस्थान की, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्कृति का परिचायक है। तो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हमें जब तक हम लोग समर्पण भाव से, त्याग भाव से और जिम्मेदारी के भाव से काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग वो उस तरह काम नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखिएगा, महात्मा गांधी एक अच्छे पत्रकार थे, पंडित नेहरू एक अच्छे पत्रकार थे, मदन मोहन मालवीय जी के तप को देखिए आप, वो किस तरह से वो किसी पर चंदा लेने गए तो किसी ने उनकी झोली में जूता डाल दिया था, उन्होंने उसको भी स्वीकार किया। आज वो हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से संस्थाएं खड़ी हैं, वो हिंदुस्तान अखबार में उन्होंने काम किया। पराड़कर जी को देखिएगा, अब भगत सिंह को देखिएगा कि वो आज के दफ्तर में आकर के काम करते रहे, वहां पे गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ काम करते रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान देखिए, वो सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गए और उनकी हत्या कर दी गई। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी पत्रकारिता में, वहां गुरुकुल के वीरों ने धर्मयुग से लेकर के और तमाम तरह के पत्र नोवा टाइम से लेकर के संपादकों के दायित्व निभाए, और स्वामी सदानंद जी जिन्होंने आजादी गुलामी के पीरियड में अलख जगाई, समाज बदलाव की, सामाजिक परिवर्तन की, दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो पत्रकारिता का इतिहास बलिदानों से भरा हुआ है, वो आज भी जुगनू चमक रहे हैं जिन्होंने अपने बलिदान देकर के इस पत्रकारिता में। हुआ क्या है कि आजादी के बाद जब बड़ी पूंजी अखबारों में आई तो पूंजीपतियों ने इसमें निवेश किया, एक कारपोरेट हाउस के रूप में न्यूज ये डेवलप हुए, तो वहां पे पत्रकार भी सुविधाभोगी हो गए, और जब वो सुविधा हो गई, मोटे मोटे वेतनों में गए, तो उन्होंने अपनी कलम की आजादी खोई है। और ये फिर ये हुआ कि वो धीरे धीरे जो शोषण का तंत्र विकसित हुआ उसमें वो भी शामिल हो गए। ऐसा नहीं कि सारी पत्रकारिता, आम आज के डेट में राजनीति में कह दिया जाता है कि बिकावा मीडिया है, फलानी चीजें हैं, आज भी लाखों लोग अखबार के दफ्तरों में अपनी रात काली कर रहे होते हैं, रात 12 बजे 1 बजे घर लौटते हैं, परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। तो वो अब जहां तक उनकी कोशिशें होती हैं, फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जब छोटे कस्बे में एक संवाददाता को वेतन नहीं मिलता, वो अपने बच्चों को घर नहीं चला सकता, तो वो जो है हट जाता है उस फील्ड से, उसकी जगह ऐसा व्यक्ति ले लेता है जिसके कि वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, उसका धंधा कोई और है, लेकिन वो कलम उठा लेता है, और कलम उठा लेता है तो निश्चित रूप से फिर वो इस पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं करता है। तो सामाजिक पिछले सत्र में ये बात उठी थी कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार जब कुछ करेगी तो उसकी कीमत वसूलेगी। सरकार का ना पत्रकारिता के लिए, सरकार के लिए हम लोग हमें कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी वो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। पत्रकारिता का उद्देश्य जनहित के मुद्दों को उठाना है, लोकतांत्रिक चेतना को जगाना है, ताकि वो समाज में उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को उठाना है। बड़ी उम्मीद से लोग देखते हैं, लेकिन आज मीडिया को सोचना होगा कि क्या हम सुबह की चाय में जिस तरह से लोग पहले अखबार का इंतजार करते थे आज भी कर रहे हैं, आज उसकी विश्वसनीयता है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो तेजी देखी गई वो कारोबार की तेजी थी, और वो तेजी के टीआरपी के खेल में जो कुछ उन्होंने किया कोई बहुत अच्छा नहीं था, आम आदमी के विश्वास से उसमें ठेस पहुंची, लेकिन आज भी जितने भी सर्वे आते हैं वो बताते हैं कि प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता आज भी कायम है। उस शब्दों की महक जो एक कागज में उभरती है वो हमारी एक स्मृतियों में रहती है, हम सहेज के रखते हैं। मुझे ध्यान है जब मैं अमर उजाला में था तो हमारा जो सर्वे करने कोई चमोली रुद्रप्रयाग के इलाके में गया, तो लोगों ने वो अखबार की जो कटिंग थी उनके सरोकारों से जुड़ी हुई उन्होंने फ्रेम करके लगाई हुई थी, लोगों का विश्वास था। मुझे सौभाग्य मिला पिछले दिनों पत्रकारिता के तीर्थ सफर संग्रहालय भोपाल में, मुझे राज्यपाल ने वहां सम्मानित किया था, तो मैंने वहां विरासत देखी। तो वो हर एक पत्रकार को वहां जाना चाहिए, और वहां श्रीधर जी हैं, विजय श्रीधर ने, उन्होंने 3 खंडों में पत्रकारिता का 200 साल का इतिहास अंकित किया है, तो वहां बड़ा गहन मंथन इस बात को लेकर हुआ। तो बदलते समय के अनुसार आज हम डिजिटल मीडिया के दौर में देख रहे हैं। मैं एक पिछले दिन भास्कर का अखबार में एक लीड छपी हुई थी कि 2.5 करोड़ यूट्यूब चैनल है, लेकिन जवाबदेही क्या कौन तय करेगा? सुबह सुबह चैनल खोलते हैं, देखते हैं खबर आ रही है, शाम तक पता लगता है खबर ही गायब हो गई है। तो हमें सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आज का विषय हमें सचेत कर रहा है, हमें नागरिकों को सचेत करना होगा कि क्या सही है क्या बुरा है। अब जो जो चैनल है वो थोड़ी तय करेगा कि पाठक क्या खबर करे, आज जो एल्गोरिथम है, जो टेक्निक है वो तय कर रही है कि किस तरह की खबरें आएंगी। कहा सोचिए किसी जगह दंगा होता है, और ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। लोग सोशल मीडिया की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उस संस्था की सबसे बड़ी घातकता यह है कि उस संस्था में कोई संपादक नाम की संस्था नहीं है, और इतना अश्लील और इतना भदेस उसमें है कि हमारे बच्चे आज बिगड़ रहे हैं। मैं तो यहां इस मंच से चर्चा करूंगा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, देश के राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे इस परिवार से लगातार जुड़ी रही हैं, प्रधानमंत्री से भी इस पर करें, जो हमारे यौन इच्छाओं का विस्फोट है पूरे देश में, उसको रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। कि इतना अश्लील आ रहा है आज की डेट में, ना शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, ना माँ बाप दे पा रहे हैं, उनको वो मोबाइल शिक्षा दे रहा है जिसे कौन संचाल रहा है। सुबह के समय आने वाले गुड मॉर्निंग के संदेशों को आप देखिए, आपने कितने बनाए हैं, कौन उनको भेज रहा है? अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से भेज रहा है। हर राजनीतिक दल का अपना सोशल मीडिया हैंडल है, सिर्फ कि आपका वोट कब जाना है उसने। तो इतनी साक्षरता, जागरूकता और इतनी विवेक हमें नागरिकों में जगाना होगा कि वो समझ सकें कि असली क्या है और नकली क्या है। लेकिन फिर भी उन्हें प्रिंट मीडिया पर भरोसा करना पड़ेगा। आज भी एक खबर जब अखबार में जाती है तो कई चरणों से गुजरती है। वहां सब एडिटर है, सीनियर सब एडिटर है, चीफ सब एडिटर है, न्यूज एडिटर है, एडिटर है, और उसमें कानूनी पक्षों को देखते हैं, सूंघते हैं कि इस खबर में कहीं रिपोर्टर का इंटरेस्ट तो नहीं है। जब इतने चरणों से खबर जब पहुंचती है तब जाकर कि उम्मीद की जा सकती है कि एक विश्वसनीय खबर आई, भले ही वो आपके पास सुबह पहुंचती है लेकिन वो कई चरणों से फिर पहुंचती है। और सबसे बड़ा संकट प्रिंट मीडिया के सामने ये है कि आपके हाथ में जो सुबह का अखबार आता है, जिसे आप 4 रुपए में देने में, 5 रुपए देने में हॉकर से झंझे करते हैं, उसकी कॉस्ट 20 से 25 रुपए के आसपास आती है। कागज इतना महंगा हो गया, हम फोटो स्टेट भी कराते हैं तो 2 रुपए का आ जाता है, 4 रुपए का आ जाता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। वो विज्ञापनों का दबाव है, लेकिन वो सामाजिक सरोकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो है अपने मूल्यों से समझौता करें, और नहीं कर भी रहे हैं, बड़े समाचार नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह की व्यापारिक नीतियों को, वो जो विज्ञापन है, जो व्यावसायिकता है, वो उसको प्रभावित करती है। लेकिन हमारा मीडिया का दायित्व है कि हम जनहित में लोकतांत्रिक प्रणाली को हम लोग कैसे सशक्त बनाएं, वो ताकि जो फ्रीबीज के चक्कर में हमारे वोटर्स जो अपने वोटों को दे देते हैं वो ना दें। ये वैसे हमारी विडंबना ही है कि हम अमृतकाल में भी अपने वोटरों को इतना जागरूक नहीं बना पाए कि वो अपने वोटों को जो है विवेकशील ढंग से उसका जो उपयोग कर सके। तो चुनौतियां पत्रकार हर जगह निभा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस समय 300 पत्रकार जेल में हैं, और गाजा के संघर्ष, यूक्रेन संघर्ष में देखें कम से कम 150-200 पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है। और गाहे बगाहे छोटी जगह घटनाओं में प्रतिरोध के कई मामले सामने आते हैं, जहां उनका प्रयास होता है वो करते हैं। लेकिन जब से सोशल मीडिया हावी हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, अब मुझे कई दफे लेख ऐसे आते हैं कि पता नहीं लगता कि किसने क्या, एक मेरे पास सीए आए, वो कहता है मैंने किताब लिखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखी है, और 800 पेज की किताब लेकर के आए। अब वो क्या लिखेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप से मैटर क्रिएट थोड़ी करेगी, वो जो गूगल में जो मैटर बना हुआ है उसी को जोड़ तोड़ करके वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगी। मौलिक चीज तो नहीं खत्म। अच्छे अच्छे कलाकार इसके सामने संकट खड़ा हो रखा है, जीवन की साधना लगाते हैं कला में, वो एआई से बना करके उसको उठा करके हेर फेर करके वो आपके सामने कर। ये मौलिकता का संकट पूरे देश के सामने इसको लेकर के आएगा। भ्रम होता है कि सच झूठ है या झूठ सच है, निर्णय कर पाना बहुत विवेकशील होने की जरूरत है उसमें। तो आज जब से पत्रकारिता एक न्यूज इंडस्ट्री के रूप में उभरी है और व्यावसायिकता उसमें हावी है, तो उसमें विश्वसनीयता का संकट हमारे सामने पैदा हुआ है। लेकिन पत्रकारिता का सीधा सा सिद्धांत है कि पत्रकारिता जनता के हित के लिए है, पत्रकारिता किसी का अहित नहीं कर सकती। गांधी जी ने भी इस बार आगाह किया था कि ये विडंबना है कि जिनको सुधारना चाहिए, उनका इशारा राजनीति की तरफ था, वो लोग ही सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, रास्ता बड़ा कठिन है। लेकिन पत्रकारिता के भीतर से ही लोगों को प्रयास करना होगा कि पत्रकारिता के स्तर को, इसकी गुणवत्ता को, इसकी विश्वसनीयता को हम लोग कैसे सुधारें। कल हम लोगों को जो बैग मिले थे उसमें 2 शब्द लिखे हुए थे कि बी होली बी योगी, तो वो बहुत उसमें गहरा संदेश था कि हम लोगों को पवित्र भाव से जीवन मूल्यों के साथ में और एक योगी की तरह साधना, योगी जो होता है एक साधक होता है, एक साधना होती है। लेकिन योगी होने का मतलब केवल ध्यान प्राणायाम नहीं है, उसके लिए यम भी चाहिए, उसके लिए नियम भी चाहिए, उसके लिए आसन भी चाहिए, उसके लिए प्राणायाम भी चाहिए, उसके लिए प्रतिहार भी चाहिए, धारणा भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, फिर ही पत्रकारिता की समाधि हमारी दिखाई देगी। जब यम की बात करते हैं तो हमारे विचारों में अहिंसा होनी चाहिए, हम सत्य के पक्षधर होने चाहिए, हम अस्तेय की बात करें, हम ब्रह्मचर्य की बात करें, हम अपरिग्रह की बात करें, इसी तरह से नियम भी है कि हमारे जितने शब्दों में विचारों में शुचिता होनी चाहिए, हमारे विचारों में संतोष होना चाहिए, हमें तप की भावना होनी चाहिए, हमें स्वायदाही की भावना होनी चाहिए, हमारे में ईश्वरीय प्रणय धारणा होना चाहिए कि हम अपनी जो भी उपलब्धियां हैं वो ईश्वर को दें कि भाई ये आपका योगदान है, उसके हम लोगों का हुआ। और प्रभा दीदी कल थी, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमें स्वधर्म को नहीं भूलना चाहिए, तो एक पत्रकार को भी अपना स्वधर्म नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग किस उद्देश्य से पत्रकारिता आए हैं। मैं कई जी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग उस भाव को समेत अपने साथ साथ समय के साथ साथ नहीं ढाल पाए हैं, इसलिए हम लोगों पर ये उंगलियां उठती हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि हम जब इस ज्ञान सागर से घर लौटें तो ज्ञान के मोती लेके उठें और समाज की पत्रकारिता के दायित्वों के लिए अपना योगदान करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता अरुण जी, आपने विषय को खोला और कुछ चिंताजनक प्रश्न भी हम सबके सामने रखे। मैं समझती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया कर्मी भी इस विषय पर चिंतन करते हुए यहाँ से हम शुभ संकल्प करें। ये शुरुआत हम अपने से करें। थोड़ी सी चिंगारी पूरी आग में बदल देती है, तो अगर हम थोड़ी सी एक नई शुरुआत करेंगे तो हम पूरे मीडिया जगत की दिशाओं को बदलने में समर्थ हैं। मुश्किल कोई कार्य नहीं है, सर्व कार्य आसान है, लेकिन शुरुआत हम अपने से करें। हम कभी कभी चाहते कि कोई करे, लेकिन जब कोई करे उससे पहले हम करें, यह हम सबके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। अब मैं आज के सत्र को ग्रीटिंग्स देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर गंगाधर भाई। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक मुखपत्र है ओम शांति मीडिया, इनके आप एडिटर हैं। आपको 2024 से लेकर 2011 से लेकर 2024 तक कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने विभिन्न अवार्डों से सम्मानित किया है, क्योंकि आपने लेखनी मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता पर आपने जो शुरू की है 1985 में, आपने ब्रह्मा कुमारीज की युवा पदयात्रा से जुड़े और पिछले 40 वर्षों से आध्यात्मिक मार्ग पर आप चल रहे हैं। 1999 से आप मूल्यानुगत मीडिया के हित के लिए ओम शांति मीडिया के आप एडिटर पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं ब्रह्मा कुमार डॉक्टर गंगाधर भाई जी से अनुरोध करती हूं कि आज के इस विषय पर अपने प्रमुख विचार रखें ब्रह्मा कुमार डॉक्टर गंगाधर भाई।
ओम शांति। आज का ये नुमा शाम का ये सत्र बहुत ही सुंदर तरीके से, आज एक नैथानी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हमें अपने स्वधर्म को नहीं भूलना चाहिए। हम अगर पत्रकारिता में ये व्यवसाय से जुड़े हैं तो एक दूसरे की और स्व की कल्याण की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरे को हित साथ से कभी हमारा स्वयं का हित भी ना भूलना चाहिए। इसी संदर्भ में आज के विषय पर हम थोड़ी बात मेरे अनुभव की मैं रखना चाहता हूं। ज्ञान सरोवर के पवित्र माहौल में हम इतने सुंदर एक पवित्र माहौल में अगर हम यहां इकट्ठे हुए हैं तो हम स्वयं के लिए भी कुछ चार्ज करने का ये मौका मिला है। आप लोग तो कहीं जाते होंगे तो एक प्रोफेशनल बेस से जाते होंगे और सारी ड्यूटी करते हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन यहां हमें अपने आप को देखने का और अपनी शक्तियों के बारे में परिचित होना ये अवसर मिलता है। आज के ऐसे विषय पर हमें एक सुंदर मनन करेंगे, हम सभी आत्मसात करेंगे। हम प्रोफेशनल, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़े हुए हैं। हम अक्सर कहते हैं मीडिया समाज का दर्पण है, लेकिन आज समय हमसे एक कदम आगे बढ़ने का आग्रह कर रहा है। अब वो पुरानी चीजें अब ये वर्तमान समय में नहीं चल पाएगी। मीडिया केवल दर्पण न रहे वह दिशा निर्देशक बने। इसके लिए सबसे पहले जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसमें चार बिंदु है जो आप, चुनौतियां बाहर से नहीं है, चुनौतियां भीतर से है। आज मीडिया के सामने चुनौतियां नहीं है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, तेजी, दबाव और आकर्षण, लेकिन असली चुनौती है, बहुत सुंदर बात, लेकिन असली चुनौती है क्या हम इन सबके बीच अपनी चेतना को शांत, संतुलित और स्थिर रख पा रहे हैं। व्यवसाय में हम जाते हैं लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि हम स्थिर और शांत रह सकते हैं। आज का मीडिया, क्योंकि जब चेतना डगमगाती है तो कंटेंट भी डगमगाता है, और जब चेतना स्पष्ट होती है तो संदेश भी समाज में स्पष्ट दिशा देता है। नहीं तो दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु, जो आंतरिक शक्तियां हैं हमारे पास, जो प्रभु प्रदत्त है, वो कैपिटल है हमारे पास। जैसे हम बिजनेस में अक्सर क्या करते हैं, कैपिटल रिसोर्सेस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन आज मैं एक नई पूंजी की बात करना चाहता हूं, इनर कैपिटल, जो हमें हर पल उसको यूज करना है, बढ़ाना है। आंतरिक पूंजी या संपदा या खजाना, यहां पर परमात्मा ज्ञान के अनुसार यह मुख्यतः चार आंतरिक पूंजी है, सबके पास है। एक है शांति, साहस, करुणा और आत्मसम्मान। शांति हमें हर पल अपने मानसिक अवस्था को स्थिर करने में मदद करती है। साहस हमें सत्य बोलने की शक्ति देती है। करुणा जो हमें मानवता के साथ जोड़े रखती है, उसको समझने में हमें मदद करती है। जब आत्मसम्मान की बात है, ये महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान हमें हमारे उद्देश्य से नीचे गिरने नहीं देती। जब एक मीडिया प्रोफेशनल एक पूंजी से समृद्ध होता है, तो वह केवल खबर नहीं देता, वह चेतना को ऊंचा उठाता है। तीसरा बिंदु है, कहीं हमें स्पीड के साथ डेप्थ खो तो नहीं रहे। जैसे आज की मीडिया बहुत स्पीड बहुत है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज, इंस्टेंट अपडेट, वायरल कंटेंट, ये सब फैलाने में हमें फॉरवर्ड करते रहते हैं और कुछ भी हमारा आ जाए। लेकिन एक सवाल है, क्या इस स्पीड में हम डेप्थ को खो तो नहीं रहे? ये आत्मचिंतन करने की बात है। आंतरिक शक्ति हमें यह सिखाती है, स्लो डाउन इंटरनली, इवन इफ यू मूव डाउन, मूव फास्ट एक्सटर्नली। हम भाग दौड़ की जिंदगी में चलते रहे, लेकिन अपनी स्पीड को स्लो करना है, मना स्थिर रखना है और सारे कार्य करना है। जब भीतर गहराई होती है तो बाहर की गति भी संतुलित सार्थक हो जाती है। क्योंकि जब भीतर से कहा ना, सचेत करने के लिए हम निकले हुए समाज में अलग अलग मुद्दों, तो सचेत करने जाते हो तो भीतर ही हमें बहुत कैपिटलाइज होना होगा। चौथा और महत्वपूर्ण, आज का मीडिया से एनर्जी ट्रांसमिशन, ऊर्जा का प्रसारण, सिर्फ खबरें नहीं। हम सोचते हैं कि मीडिया केवल शब्द और चित्र प्रसारित नहीं करता है, लेकिन वास्तव में वह ऊर्जा ट्रांसफर करता है, प्रसारित करता है। अगर मन में भय है तो कंटेंट में भी वो भय झलकेगा। अगर मन में क्रोध है तो भाषा भी कठोर होगी। अगर मन में शांति है तो संदेश भी हीलिंग होगा, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी। इसीलिए आज का मीडिया सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एनर्जी कॉन्शियस कम्युनिकेशन, हम क्या शक्ति दे रहे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, आप लोगों को इसीलिए ही बुलाया है, यहां आके हम अपने आप को चार्ज करें, एक बैटरी, ये एक शांति का और ऊर्जा का केंद्र है। ऐसा माहौल और मैं समझता हूं कहीं नहीं होगा। राजयोग चेतना का सशक्त, राजयोग से चेतना को सशक्त बनाने की विधि, ये हर एक की निजी जिंदगी में बहुत जरूरी है। परमात्मा हमें एक सरल साधन देते हैं, राजयोग मेडिटेशन। पूर्व सेशन में भी जिक्र किया और यहां भी यह कोई ध्यान नहीं है, वह चेतना को पुनः चार्ज करने की प्रक्रिया है, भीतर से ऊर्जावान बनाने की एक प्रक्रिया है। जब कुछ मिनट हम कुछ मिनट में मिनट के लिए अपने आप को समझकर परमात्मा से जोड़ते हैं तो विचार तो शुद्ध होते हैं, भावनाएं संतुलित होती है और निर्णय शक्तिशाली बनते हैं। तो मीडिया में हमें ये करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे माहौल में आप सभी आए हो तो सबसे रिलैक्स माइंड से, कोई खबर की आपाधापी नहीं है, रिलैक्स भी होइए, रिचार्ज भी होइए, रिफॉर्म भी होइए और अपने आप को अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कर सके ये करिए। जब चेतना ऊंची होती है तो मीडिया केवल खबर नहीं देता, यह इतिहास रचता है। लास्ट, एक दिन शिकायत करे वक्त से और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गंगाधर भाई जी का। आपका सार यही रहा कि हमें स्वयं को इतना सशक्त करना है, स्वयं को इतना भरपूर करना है, स्वयं को इतना शांत बनाना है जो हमारी लेखनी बोलनी और हमारे व्यवहार के माध्यम से हम जन सेवा कर सके, यही हमारी सच्ची पत्रकारिता होगी। ये आपका आज का एक मैसेज है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मंचस्थ महानुभाव में से गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सुमरेश कुमार वर्मा जी को। डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा जी ब्रह्मा कुमारी संस्था से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबा आपका परिचय पत्र है, लेकिन मैं खास ये परिचय में बताना चाहूंगी कि आप वर्तमान समय प्रोफेसर और रेडियो इंचार्ज के रूप में मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी में आप वर्तमान समय कार्यरत हैं। पिछले 15 से अधिक वर्ष से आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एक राइटर के रूप में, एडिटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लोगों की सेवा के लिए। जटिल से जटिल विषयों का सामान्य भाषा में भाषांतर करना आपकी एक स्पेशलिटी है। न्यूज रिपोर्टिंग, पीआर मटेरियल्स, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग, फीचर राइटिंग, रेडियो मैगजीन्स के लिए आपने बहुत कार्य किया है, इसमें आपकी निपुणता है। तो ऐसे डॉक्टर सुरेश वर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ आज के विषय पर हम सभी को मार्गदर्शन दे। डॉक्टर सुरेश वर्मा जी,
बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है बहुत कम समय में मैं कुछ अलग से बात कहना चाहूंगा और मंच पर आसीन 10 विभूतियां हैं, प्रबुद्ध विभूतियां हैं, उनसे आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेकिन मैं जो आपसे सीधी बात करना चाह रहा हूं, मीडिया की जब हम बात करते हैं तो किसी भी डेमोक्रेसी का कौन सा स्तंभ मानते हैं उसे?
जी हाँ जी, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा?
वेरी नाइस। देखिए, अगर हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज की बात करते हैं और जुडिशरी की बात करते हैं तो उसके बाद चौथा स्थान आपका आता है, यानी जो लोकतंत्र छपा हुआ है, जो बना हुआ है, उसके आप चौथे आधार स्तंभ हैं। तो कितना महत्व हो गया। लेकिन मीडिया के आगे स्तंभ क्या है? कोई भी मीडिया चलाना होता है तो किन बातों से चल सकता है? आप में से कोई बताएंगे? हाँ जी, हाँ, पैसा, बहुत अच्छे, तालियां हो जाए इनके लिए। कोई भी मीडिया चलाना है बिना पैसे के नहीं चलेगा। उसके अलावा जी, स्क्रिप्ट स्किल्स। अच्छा बहुत अच्छे, यानी आप मानते हैं कि कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, उसके बिना मीडिया नहीं चल सकता। वेरी नाइस। संपर्क, उसके अलावा? हाँ जी, निडरता। नहीं नहीं, मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं जी। हाँ जी, हाँ, यानी उसके लिए एक माइंड चाहिए आपको। वेरी नाइस, तालियां हो जाए इनके लिए भी। और भीतर की इच्छा जी, उसके अलावा? हैं जी, ट्रांसपेरेंसी। देखिए अब यहां हम थोड़ा सा भटक रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, देखिए इन्होंने कहा मैन पावर, बिना हमारे पास रिसोर्स के हम मीडिया नहीं चला सकते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जिसे मानता हूं सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कंटेंट। अगर आपके पास सामग्री ऐसी होगी जो लोगों को प्रभावित कर रही है, तो आपका वो मीडिया सशक्त हो सकता है, सबसे प्रबल हो सकता है। तो कंटेंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है जो ट्रांसफॉर्मेशन की, तो कंटेंट में क्या परिवर्तन हुए हैं आप बताइए, कंटेंट किस तरीके से बदला है? आपने पिछले, अगर हम चार दशकों की बात कहें, तो मीडिया में किस प्रकार का परिवर्तन आया है? देखिए पहले कंटेंट का आधार मानते थे। हम मीडिया में कुछ प्रसारित क्यों करते थे? उसका लक्ष्य होता था लोगों को सूचित करना, लोगों को एजुकेट करना और लोगों को एंटरटेन करना। ये तीन लक्ष्य के साथ हम मीडिया पढ़ाते थे और मीडिया आगे जो काम करता था वो तीन लक्ष्य होते थे। लेकिन आज के नहीं, आप देखिए कितने मीडिया चैनल हैं जो कहीं कुछ ना कुछ एजुकेट कर रहे हैं, कितने मीडिया चैनल हैं जो प्योर सूचना दे रहे हैं। तीन चीजें होती हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन। तो क्या हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? यहां पर जो बैठे हुए हैं बहुत से प्रबुद्ध जन, तो वो मानेंगे इस बात को कि आज हम इंफॉर्मेशन नहीं, कई बार उसके साथ साथ जो है छिपी हुई मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन भी दे पाते हैं, मतलब दे जाते हैं, और जिसका बहुत अधिक नुकसान भी हो रहा है। इसी प्रकार से जो एजुकेशन का लक्ष्य होता था, पहले कोई भी समाचार पत्र होता था उसके अंदर दो तीन पन्ने ऐसे होते थे जो कहीं ना कहीं आपको शिक्षित कर रहे हैं, आपके ज्ञान को वर्धित कर रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज वो बात नहीं रही है, वहां संस्कृति की बात नहीं है। अगर हम रेडियो चैनल्स की बात करते हैं तो क्लासिकल म्यूजिक आपको किसी रेडियो स्टेशन से नहीं चलता हुआ दिखेगा, जो पहले एक आधार होता था संगीत का। स्टिल बहुत कम। तो ये देखिए कि हमारी उसमें सारा सामग्री जो है वो बदल गई है। हमारे जो लक्ष्य हैं, और जो एक मीडिया का लक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, जो कि एजुकेशन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, इंफॉर्मेशन से भी, एंटरटेनमेंट से भी अधिक, वो है टू ट्रांसफॉर्म। यदि आप लोगों को उनकी आदतों में परिवर्तन कर पाए, उनके अंदर जागृत कर पाए, तो आप, इसका मतलब है कि सही दिशा में मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अगर लक्ष्य बनाए तो तब कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये कंटेंट जो है वो पहला पार्ट था। सेकंड है टेक्नोलॉजी। आप याद कीजिए, सबसे पहली बार आपने रेडियो कैसा सुना था? उसके अंदर वॉल्व होते थे, ऑन करते थे, दो तीन मिनट के अंदर ट्यूबे गर्म होती थी, उसके बाद वो ऑन होता था। ठीक है, टेलीविजन शटर वाला होगा आपने, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट था। ओके, इसी प्रकार से आप मुझे बताइए कि सबसे पहली पेन ड्राइव आपने कितनी जीबी की खरीदी थी? एमबी में जी। देखिए तो आज हम कितना परिवर्तित हो गए हैं। एनालॉग होते थे, यानी बड़े बड़े स्पूल पर। आप में से कितनों ने म्यूजिक जो है एलपी पर सुना है, वो ग्रामोफोन प्लेयर पर देखिए बहुत अच्छे हाथ उठ रहे हैं, जिन्होंने ग्रामोफोन की स्टाइलेक्स टच करके वो सॉन्ग लगाया और उसके बाद गाना सुना है, उसके बाद टेप रिकॉर्डर्स आए, फिर उसके बाद आपका डिजिटल डिवाइस शुरू हो गए। तो ये देखिए परिवर्तन। तो आज जो है मैं इसको तीन भागों में बांटता हूं कि पहले एनालॉग था, फिर डिजिटल हुआ और अब एआई का, सब कुछ एआई से हम टेक्नोलॉजी जो है वो यूज कर रहे हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो एआई जनरेटेड हो गई है। तो ये परिवर्तन जो सा है बहुत बड़ा हुआ है। आप एक महीने में पहले 1 GB नहीं खर्च करते थे, जो आज 3 GB डेली का खर्च कर रहे हैं। दिस इज द कंजम्पशन जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं फिर अपने आप को थोड़ा सा वो करता हूं। मैन पावर की जो बात की आप में से किसी ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन उसमें हमारा पहले लक्ष्य होता था, आप सोच कर देखिए, समाचार पत्र जैसे कि आपने वक्ताओं को सुना, उन्होंने बताया कि उस समय लक्ष्य क्या होता था, पैसा कमाना नहीं होता था, उस समय सेवा का भाव होता था। तो पहले मिशन था, फिर प्रोफेशन हुआ, और अब क्या है मैंने वो नहीं लिखा हुआ इसमें, मैंने दूसरी तरफ देखा कि पहले आप लोग जिन से हैं सोच नहीं सकते थे कि आप कभी कैमरामैन बनेंगे। आज किसी भी पार्टी में आप जाते हैं तो अगर 40 लोगों की गैदरिंग है तो क्या होता है, 41 कैमरा होते हैं। डू यू एग्री, होता है ना, एक कैमरामैन बुलाया हुआ है और 40 दूसरे अपनी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम सबके सब जन सा है कैमरा पर्सन हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ओम शांति। अगर मान लीजिए आज से 40 साल पहले आपको रिक्रूट करने थे अपने कुछ कॉरेस्पोंडेंट्स, अपने रिपोर्टर्स, तो आप क्या देखते थे उसमें, कैसा माइंड देखते थे? जी, उस समय महत्वपूर्ण होता था IQ, कि अच्छा IQ होना चाहिए। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपका अच्छा EQ होना चाहिए, इमोशनल क्वोशेंट। कितना ही अच्छा IQ है, सोच कर देखिए, ताज पर हमला हुआ, वहीं पर माइक कैमरा छोड़ के भाग जाए रिपोर्टर, तो क्या होगा? तो उसका इमोशनल क्वोशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है उसका SQ, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। अगर वो स्पिरिचुअल क्वोशेंट है तो किसी भी ऐसी दुर्घटना घटना को देखने के बाद सोच के देखिए, अगर एक व्यक्ति एक मर्डर देख लेता है तो कितने दिन तक अनस्टेबल रहता है। अगर ऐसी घटना उसके सामने हो रही है, जैसे बॉम्बिंग, शेलिंग और ये सब हो रही है, तो उसके बाद वो कितनी रात नहीं सो पाता, वो रिपोर्टर कितना इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए और उसके अंदर रिजिलियंस कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वहां पर आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है, आपकी SQ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस प्रकार से मेरा ये कहने का मतलब है कि पिछले 50 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है, और जहां हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक ट्रेंड्स का है, तो मैंने केवल आपको कुछ ट्रेंड्स के बारे में हल्का सा दृष्टिकोण दिया है। जहां तक ब्रह्मा कुमारी की मीडिया की बात की जाए, तो उस ट्रेंड्स को भी मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहला मीडिया कौन सा है? मुरली। पहले सबसे पहले से चली आ रही है, अगर अब तक के सबसे पुराना इतिहास अगर लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि उसमें वो मीडिया जो है वो मुरली माना जाएगा। सेकंड, उसके बाद आपको आपने सुना होगा, देखा होगा, जो गीत चलते थे, है ना, अनमोल मोती नाम से शायद वो संकलन भी है, तो वो गीतों की श्रृंखला जुनसा है वो बाबा ने मीडिया का प्रयोग किया। उसके बाद जगदीश भाई जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। अगर आप इधर की मेन लाइब्रेरी में जाएंगे या काउंटर्स पर भी जाएंगे, आपको बहुत लिटरेचर मिलेगा जो उन्होंने लिखा है। तो वो बुक्स का लिटरेचर जो है, मैं मानता हूं कि तीसरा मीडिया है जिसका प्रयोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने बहुत सफलतापूर्वक किया है। उसके बाद कुछ ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल, प्योरिटी, ओम शांति मीडिया, शिव आमंत्रण, ये सारी श्रृंखलाएं प्रिंट की बहुत सुंदर रही हैं, जिस पर मतलब समय समय पर आपको पिक्टोरियल भी और शब्दों के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती रही है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुझे लगता है मुझे समय मैं अधिक तो नहीं ले रहा हूं जी। अच्छा, उसके बाद संक्षेप में, उसके बाद अगर हम देखें तो रेडियो मधुबन और टेलीविजन का जो है वो अध्याय शुरू हुआ, और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक जो है ये स्पिरिचुअल यहां की सारी जानकारी जो है वो दी जा रही है। तो आज की डेट में ये सारा मीडिया जो है उसका बहुत अलग अलग प्रयोग यहां पर हुए हैं। तो अगर हम इस संस्था को देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है मीडिया की, जहां से ये सारा का सारा एक साथ कार्य किया जा रहा है, और ये वास्तव में देखने का विषय है। और मैंने अभी पिछले साल जो है एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को यहां बुलाकर दिखाया कि हम किस प्रकार का मीडिया यहां पर यूज कर रहे हैं, तो वो देखें, उसका अध्ययन करें, और उसके ऊपर भी रिसर्च की जा सकती है। ऐसे विषयों पर थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है। मैं लगभग दो दशकों तक ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रहा हूं, बीबीसी से मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से मैं जुड़ा रहा, और उसके बाद मैं टीचिंग में आया, तो मेरे जो है अलग अलग विषयों पर रिसर्चेस हुए हैं जिन पर मैंने किया है, और पुस्तकों का भी लेखन किया है। तो ये मेरा थोड़ा सा ऐतिहासिक उस पर रहा है। लेकिन इस आज के इस इवेंट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद होता है ना, लेकिन यहां पर जो है मीडिया का जो कुंभ है वो साल में दो बार होता है, और कितने सालों से हो रहा है, देखिए 30 सालों से हर साल दो बार मीडिया का कुंभ होता है। तो इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, आयोजकों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि एक कितना बड़ा कुंभ, जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है कि वो एक घंटे के लिए भी दो मीडिया पर्सन को बिना लड़े नहीं रख सकते, तो यहां पर इतने मीडिया कर्मी जो है वो एक साथ रहते हैं और बिना किसी विवाद के ये पूरा संचालन हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आखिर में मैं सिर्फ एक ये बात करना चाहूंगा कि अब इस समय आवश्यकता है स्पिरिचुअल जर्नलिज्म की। जिस प्रकार से आप लोग स्पोर्ट्स की बीट लगाते हैं, जिस प्रकार से आप कोर्ट के केसेस के न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसी तरीके से आपके न्यूज़पेपर्स के अंदर सेगमेंट जो है वो स्पिरिचुअल जर्नलिज्म का भी जाना चाहिए। और इस पर मैंने अभी एक कोर्स डिजाइन किया है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से अभी पास हुआ है। तो ये आने वाले समय में जो जर्नलिस्ट बनने वाले मीडिया स्कूल्स हैं उनको स्पिरिचुअल जर्नलिज्म की भी पढ़ाई कराई जाएगी। तो इस प्रकार की एक नई विधा का भी शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ये जो बातें मैंने कही हैं कि कहीं ना कहीं वो पढ़कर आएंगे तो आगे कुछ कर भी पाएंगे। तो ऐसा ऐसे मेरी कामना है, और इस दिशा में मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। तो आने वाला समय जो है वो स्पिरिचुअल जर्नलिज्म का भी होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए भी और अवसर देने के लिए भी। थैंक यू, प्लीज। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सुरेश वर्मा जी का। नए समय के साथ उभरते हुए ट्रेंड्स, हाँ जी आपका, नए ट्रेंड्स जो है और चैलेंजेस जो है उसको हमने आपके वक्तव्य के माध्यम से देखा। और उन्होंने आपने जिक्र भी किया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था भी 1936 से लेकर आज दिन तक मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में आध्यात्मिक प्रचार प्रसार हेतु किस प्रकार कदम आगे बढ़ाया है। लास्ट में आपने जो जिक्र किया स्पिरिचुअल जर्नलिज्म, ये पत्रकारिता की नई विधा है। और आज इस मंच से कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, आज से 6 वर्ष पूर्व जब शोध का कार्य मैंने शुरू किया तो मैंने ये तय किया था कि कुछ मूल्य और आध्यात्मिकता पर हो, और एक दिन आध्यात्मिकता के ऊपर शोध करने का जो मेरा संकल्प था, तो ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन सेंटर में मैं बैठी थी और वहां ही जैसे परमात्मा ने एक प्रेरणा दिया कि आप जो अपना संशोधन है वो आध्यात्मिक पत्रकारिता पर कीजिए। तो मैंने मेरा जो सोच कार्य है वो आध्यात्मिक और धार्मिक पत्रकारिता और उसमें मूल्यों को जोड़ के किया और एक परमात्मा की देन रही कि भारत का पहला ये शोध आध्यात्मिक और धार्मिक पत्रकारिता का एक महिला होने के नाते से मेरे पहले एक भाई ने थोड़ा इस पर कार्य किया था। तो जो नया कोर्स पिछले हम कई समय से मीडिया विंग सोच रही है कि आध्यात्मिक पत्रकारिता पर एक कोर्स डिजाइन हो, उस क्षेत्र में भी संस्था अभी पहल कर रही है और सुरेश भाई ने उस पर कदम आगे बढ़ाया, तो हम सभी बहुत बहुत आपको साधुवाद देते हैं कि पिछले लगातार 30 वर्षों से संस्था में मीडिया सम्मेलन जो हो रहे हैं, कई भारतवर्ष नेपाल से आए हुए पत्रकार, मेरे अनुभवों में मैंने देखा कि यहाँ आने के बाद अपनी लेखनी में अपने कार्य व्यवहार में आध्यात्मिकता को अपनाया है, कहीं तो ने रेगुलर ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र पर आना शुरू किया है। उससे पूर्व 1982 से ब्रह्मा कुमारी संस्था का मीडिया प्रभाग नहीं बना था, लेकिन परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी जो संस्था के प्रमुख चीफ स्पोक्स पर्सन फर्स्ट रहे, उन्होंने मीडिया के लिए बहुत सुंदर कार्य किए थे और तब भी एक दो वर्ष में मीडिया कॉन्फ्रेंस होती थी, तब तो हम बहुत छोटे थे और जब यहाँ माउंट आबू में कोई कार्यक्रम होता था तो अहमदाबाद नजदीक होता था, तो यहाँ से परम आदरणीय दादी जी का आदेश होता था कि कुछ मीडिया के भाई बहनों को लेके आइए ताकि ये संदेश समाचार पत्रों के जरिए पहुंचे, क्योंकि उस समय ज्यादा चैनल्स थी नहीं, एक दूरदर्शन ही था। तो कुछ 5-6 पत्रकारों को हम लेके आते थे और ऐसे लगता था कोई बड़ा कार्य हो रहा है, और आज दिन भर में 50 पत्रकारों को यूं ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम मैसेज भेज देते हैं और समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यमों से ईश्वरीय संदेश जाता है। तो ये बदलते हुए समय की एक मांग है, नए ट्रेंड्स जो हैं वो समय के साथ हमें भी परिवर्तन करने का सिखा रहा है। इसी दिशा में मैं अगले वक्ता ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सोमनाथ वडनेरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप जलगांव से हमारे मध्य हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पद पर कार्य कर रहे हैं। आपने अपना शोध कार्य भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कुछ विषय पर किया, जैसे आपने साइबर क्राइम प्रिकॉशन और डिफेंस पर आपने अपना शोध कार्य किए हैं, कहीं आपके रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं और ब्रह्मा कुमारी इसके काफी मीडिया सब्जेक्ट से आप जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सोमनाथ भाई,
ओम शांति। आदरणीय विचार मंच और उपस्थित भाई और बहनों, विषय को लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। हमारा विषय जो है समाज हित के लिए मीडिया के नए रुझान, और ये जो रुझान है उस पर हम पूरा मंच मार्गदर्शन करने के लिए यहां पे बैठा है, क्योंकि मैं कम टू द पॉइंट बोलना चाहता हूं। दो बातें यहां पे, एक तो नए रुझान मीडिया के अंदर जो नए रुझान आए हैं उसका हमें पहले चिंतन करना होगा, फिर ये नए रुझान जो है समाज हित में किस प्रकार से कार्य करेंगे इस पर हमें मार्गदर्शन करना होगा। तो कुछ नए रुझान जो है, न्यू ट्रेंड्स, जिसका जिक्र अभी कुछ वक्ताओं ने किया, और उसमें से जो मिसिंग डायमेंशन है, जो मिसिंग रुझान है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले बात तो है सोशल मीडिया एक्टिविज्म जो है आजकल नया ट्रेंड निकला है। पहले सोशल काम करने वाले, मतलब सोशल वर्क जो थे, बहुत संख्या में, अधिक संख्या में सामने आए थे। अभी सोशल मीडिया एक्टिविज्म जो बहुत संख्या बढ़ गई है, और उसका एक छोटा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, हैशटैग। ऐसी बात जो लोगों के सामने रैपिडली स्प्रेड करना हो तो उसके लिए नया ट्रेंड निकला है, हैशटैग लगाओ और सोशल मीडिया में डाल दो, चाहे न्यूज में, चाहे यूट्यूब में, चाहे कमेंट्स में, चाहे एवरीथिंग, आप जो जो कंटेंट प्रस्तुत करोगे उसमें अगर हैशटैग लगा दिया तो रैपिडली ग्रो हो जाती है वो बात। ये नया ट्रेंड आ गया सोशल मीडिया का, और इसके लिए कुछ ट्रेन जो है, जैसे मीटू नाम का ट्रेन निकला था, तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बहनें जो शोषित थी इस व्यवस्था से, उन्होंने भी कहा कि मैं भी शोषित हूं, मैं भी वंचित हूं, मेरे पर भी अत्याचार हो रहे हैं। तो ये मीटू हैश जो है रैपिडली ग्रो हो गया और पूरे संसार में ऐसी लहर फैल गई कि जो महिलाओं पर, बहनों पर अत्याचार होते थे, वो बहुत संख्या में लोग सामने आए। ये बहुत बड़ा नया ट्रेंड, जो पॉजिटिव, जिसको कहेंगे पॉजिटिव साइंस ऑफ न्यू ट्रेंड्स, ये है। और कुछ ऐसे नए हैशटैग निकले कि जो जो नए ट्रेंड्स जो है, जैसे सेव एनवायरमेंटल, सेव ट्री, सेव वाटर, हैशटैग सेव वाटर, हैशटैग सेव एनवायरमेंटल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि न्यू ट्रेंड जो निकले हैं समाज हित में काम कर रहे हैं। इससे दूसरी साइड को भी देखेंगे, हैशटैग के दुरुपयोग भी हो रहे हैं। एंटी शब्द लगाओ हैशटैग में, एंटी सोश, एंटी ये, एंटी ओ, तो यहां मैं इसलिए डॉट डॉट बोल रहा हूं क्योंकि प्रमोशन नहीं करना चाहते हम एंटी सोशल टैग का। तो ये एंटी सोशल हैशटैग भी बहुत नुकसानकारक है। यहां पे मंच पर सभी के सामने एक बात बिल्कुल बोलूंगा, यूट्यूब पर ब्रह्मा कुमार जी काफी अच्छी अच्छी वीडियोज है, काफी अच्छा जो कंटेंट है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर गंगाधर भाई जी ने किया, कंटेंट इज द किंग। आज के संसार में जिसके पास कंटेंट अच्छा हो वो राजा है, वो साम्राज्यवादी है, और इन्फॉर्मेशन इज पावर जो बोलते हैं ना, तो यही बात है। तो कंटेंट में ब्रह्म कुमारीज का जो हैशटैग है, हैश ब्रह्म कुमारीज, हमारे अपने रेडियो मधुबन वाले रोहित भाई ने बहुत अच्छी तरह से दो तीन वेबसाइट्स निकाली है, हैशटैग ब्रह्म कुमारीज यूज करने के बाद बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। तो एंटी हैशटैग भी बहुत निकले। तो मैं मंच से ये बात बोलना चाहूंगा कि मार्गदर्शन हमको मिलना चाहिए न्यू ट्रेंड पर। तो मैं यही कहूंगा कि हैशटैग का आप अच्छी तरह से यूज कीजिए, हैशटैग ब्रह्म कुमारी, हैशटैग पॉजिटिव थिंग्स, हैशटैग राजयोगा मेडिटेशन, अगर ये आपने यूज किया तो जो निगेटिविटी है वो कम हो जाएंगे और पॉजिटिव हैशटैग बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से एक गिलास लिया है, खाली गिलास में छोटा कम मात्रा में गंदा पानी है और वहां पे पूरा ग्लास अच्छे पानी से भर दो तो गंदा पानी वहां से कम हो जाता है, दिखने लगता है। इसी बात है न्यू ट्रेंड्स में, अगर हैशटैग अच्छी तरह से यूज करोगे आप तो डेफिनेटली जो निगेटिविटी है, निगेटिव बातें हैं, वो जल्दी चले जाएंगी। डिजिटल जर्नलिज्म, इसके बारे में तो कोई बहुत बात करने की जरूरत ही नहीं। हमारे आदरणीय अरुण भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से उसमें प्रकाश डाला है। उनकी जो एक प्रकार से उनका अंतर्ष तो आक्रोश था कि जर्नलिज्म में जो नए ट्रेंड्स निकल रहे हैं और हमने जो जर्नलिज्म किए, उन्होंने जो ट्रिब्यून से लेके जो जर्नलिज्म किए, उनके अंदर जो एक प्रकार से इस नए ट्रेंड्स के लिए उन्होंने जो विचार व्यक्त किया, तो मैं कहूंगा कि डिजिटल जर्नलिज्म जो नया ट्रेंड निकला है उसमें भी बहुत अच्छी तरह से हमको जो कंटेंट को है, कंटेंट को सफाई से काम करना है। जिस प्रकार से 800 पेज का किताब AI लिख सकता है, और मंच पर एक बात और एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि एक पहला, सबसे पहला AI वेब AI न्यूज़पेपर निकला अभी, हालांकि एक 6-7 महीने पहले एक खबर आई थी कि एक ही अकेले संपादक ने 16 पेज का अखबार बना दिया AI की वजह से। AI में कुछ डाला कंटेंट और बस बन गया अखबार। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस ये न्यू ट्रेंड्स का हमारे सामने है, तो इसके ऊपर भी हमें मार्गदर्शन करना पड़ेगा। AI ऑटोमेशन जो देख रहे हैं हम कि बहुत सारा जो बातें हैं ऑटोमेटिकली आ रही है, सूचना सटीक हो रही है, लेकिन मैं अभी वार्षिक मीटिंग यहाँ पे आया था तो आदरणीय मोहिनी दीदी जो संस्था की प्रमुख प्रशासकीय हेड है, उन्होंने एक शब्द अच्छा यूज किया जो मुझे मन में बहुत भाया है। उन्होंने AI को ट्रांसफर करने के कहा आत्मिक इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको बदलो आत्मिक इंटेलिजेंस में। तो ये बस हमको फाइंड एंड रिप्लेस करना है, एक एक कमांड यूज करनी है, कंट्रोल F, जो कंप्यूटर में हम हमेशा करते फाइंड करते, क्या फाइंड करते, जो चाहिए वो। हमको निगेटिव फाइंड करना है और रिप्लेस क्या करना है, पॉजिटिव। तो ये न्यू ट्रेंड जो है, नए रुझान जो है, ये बहुत अच्छी तरह से आएंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट्स, इस पर भी आप प्रकाश डालेंगे अच्छी तरह से, अगर पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव कंटेंट अगर ज्यादा संख्या में लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं समझता हूं ये जो निगेटिविटी है जल्दी बढ़ जाएंगी, निगेटिविटी खत्म हो जाएंगी। तो वीडियो और शॉर्ट रील का भी आजकल न्यू ट्रेंड आया है। पहले यूट्यूब में पांच बार दस दस पंद्रह पंद्रह आधे आधे घंटे के वीडियो आते थे, अब नया ट्रेंड आया है स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग। हम में से बहुत सारे लोग भी उसके अंदर माहिर है स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग। तो ये शॉर्ट जो रील्स है ये न्यू ट्रेंड है, और हमको भी जो मार्गदर्शन इस पर करना है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें हैं न्यूट्रिएंट्स की वो आने। तो लास्ट में मैं घंटी बजने के पहले ही मैं कंक्लूज करना चाहता हूँ, क्योंकि कम बात करेंगे तो अच्छा रहता है, ज्यादा बातें हो जाएगी तो पहले जो मैं बताऊंगा ना उसका जो असर है कम हो जाएगा। इसलिए मैं त्रिसूत्री मैंने खुद ने इसके ऊपर पाई है कि अगर त्रिसूत्री का इस्तेमाल करे तो न्यूट्रिएंट्स पर अच्छी तरह से मार्गदर्शन होगा। उसमें पहली सूत्र है जो है स्वनियंत्रण, दूसरा है स्वनियमन, और तीसरा है स्व अनुशासन। शब्दों से ही आप समझ गए होंगे बात को। अगर स्व शब्द जो है इन तीनों शब्दों नियंत्रण नियम और अनुशासन के पहले लगा दिया जाए तो मैं समझता हूं जो निगेटिविटी ट्रेंड्स है, जो निगेटिव ट्रेंड्स है, जरूर वो निगेटिव ट्रेंड्स खत्म हो गए। और बाकी तो टेक्निकली बातें तो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, जैसे मीडिया लिटरेसी जिस प्रकार से वर्मा जी ने कहा कि आध्यात्मिक पत्रकारिता, हमारी डॉक्टर नंदिनी बहन मैं साक्षीदार हूँ, कमल दीक्षित जी और हम लोग इनसे काफी चर्चाएं करते थे, काफी अच्छा उन्होंने रिजल्ट निकाला है, जल्दी ही बहन जी किताब बनाओ उसकी, क्योंकि आध्यात्मिक पत्रकारिता आध्यात्मिक जर्नलिज्म जो है ये बहुत मायने रखती है। और फैक्ट चेकिंग जो कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो ये जो हमारी जो बातें आ रही है संसार के अंदर रियल के बात है, रियल और रियल में जो अंतर रहता है वो फैक्ट चेकिंग अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी बातें मैं समझता हूँ हो जाएंगी। हमारे डॉक्टर राजेश राजौरे सर और हमारी अभी अभी नई एक किताब निकली है सीधी बात शायरों के साथ, तो उसमें से ही एक शेर जो है मैं यहाँ पे आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। मीडिया की भूमिका समाज हित में पहले होनी चाहिए, मीडिया की भूमिका समाज जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही है, मीडिया की भूमिका समाज हित में पहले होनी चाहिए। मेरी आरजू यही है, मेरी आरजू यही है कि मैं किसी के काम आऊं, जो बताया है मार्गदर्शन, मेरी आरजू यही है कि मैं किसी के काम आऊं। मैं तो चिरागों का रह गुजारू, रह गुजार माना स्ट्रीट लाइट जो मार्गदर्शन करते, मुझे शौक से जलाओ यार। ओम शांति, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ भाई, समय से पहले ही आपने पूर्ण किया। और लास्ट शायरी हम सभी को एक सूचना दे गई कि शुरुआत हमें अपने से ही करनी है, हम शुरू करेंगे तो हमें देखकर और भी मीडिया जगत के लोग हम सबसे जुड़ जाएंगे। और मैं समझती हूँ भारत जो एक मूल्यवान अध्यात्म समाज बनाने में सबसे पहले ही एक अपनी मशाल लेकर आगे बढ़ा है तो वो उसमें हम सब भी जुड़े हुए रहेंगे। अब हम बीच में परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, मीडिया माना हमेशा सबसे कनेक्ट रहना, तो अगर बीच बीच में हम भगवान से भी कनेक्ट रहेंगे तो उसकी सुप्रीम चार्जिंग जो होगी तो अन्य सोर्स जो है वो हमें फटाफट जल्दी से क्विकली मिलते जाएंगे। तो जरूरत है बीच बीच में अपने आप को रिचार्ज करना, अपने आप को एम्पावर करना, और उसके लिए माध्यम है मेडिटेशन। तो मैं पूनम दीदी से अनुरोध करती हूँ कि हमको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराए। पूनम दीदी चंडीगढ़ से हमारे बीच में है और पंजाब जोन के हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। दीदी आप वहाँ ही बैठे। दीदी जी का बाल्यकाल से ही संस्था के साथ जुड़ाव रहा है, आपने पंजाब के अंदर आध्यात्मिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए आपके अहम भूमिका है, विशेष आप मीडिया और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं और वहाँ की मीडिया सेवाओं को आपने देखा है, वहाँ के खेल जगत के खिलाड़ियों की भी आपने सेवा की है। वर्तमान समय जैसे अरुण जी ने भी आपका जिक्र किया, अभी हमारे चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक पीस मेडिटेशन हब सेंटर आपने बनाया है जो वाकई देखने का एक सुंदर स्थान है, वो आपकी ही तपस्या का बल है। तो आपका आध्यात्मिकता के प्रति जो रुझान है वो हम सभी को मेडिटेशन के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय पूनम दीदी जी,
ओम शांति। सभी मिलकर जरा दिल से बोलेंगे, आवाज से, इतने बड़े हॉल में हम सब विराजमान हैं। ओम शांति। सम्मानीय मंच, सभा में उपस्थित मेरे मीठे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत सुंदर सुअवसर पर एकत्रित हुए हैं। सारे दिन की भागम भाग जिंदगी में हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, बिजी होते जा रहे, अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। सुबह से उठकर जैसे प्रभात होती, प्रभात में उठते हैं और सारे दिन में अपनी भागम दौड़ जिंदगी में अपने अपने कार्य व्यवहार में बिजी रहते हैं। एक काम खत्म होता है, दूसरे में बिजी हो जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे बात चल रही थी कि अपने आप को खोजने की बात, तो देखा जाए इतिहास के पन्नों को पलटे तो सुप्रभात का समय बहुत अच्छा गायन किया जाता है। पहले के जमाने में सुबह प्रभात के समय में प्रभु सिमरन का गायन आता था। पुराने जमाने में पहले बच्चे उठते थे तो उनको माँ बाप के चरण छूने का की शिक्षा दी जाती थी, भगवान को याद करने की शिक्षा दी जाती थी। आजकल के एडवांस जमाने में सबसे पहले उठते हैं तो कौन सी शिक्षा मिलती है? व्हाट्सएप ओपन होने की, मोबाइल ओपन होने की, न्यूज़पेपर देखने की, क्योंकि जमाना फास्ट गति से जा रहा है। तो इस सारी जिंदगी के कार्य व्यवहार में करते हुए अगर हम देखें तो हम अपने आप से कहीं लुप्त होते जा रहे, वो सभ्यता वो संस्कृति कुछ दूर हो गई है। तो जरूरत है अपने को खोजने की, अपनी शक्तियों को जागृत करने की, अपनी इनर पावर क्रिएट करने की। सारा दिन हम सुबह से काम करते हैं, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, बॉस को खुश करने के लिए, बच्चों की लायबिलिटीज पूरी करने के लिए। क्या हमने कभी अपने लिए जिया? इस बात से कोई एग्री है? अपने लिए जीते हैं या दूसरों के लिए जीते हैं? दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए हमने समय कब निकाला? तो आज हम सब एकत्रित हुए हैं अपने कुछ पल, कुछ दिन यहां सारी दुनिया से परे होकर, अलग होकर, कुछ पाने के लिए, कुछ खोड़ करके जो खोया था उसको, अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए। ऐसी ही एक हम रूहानी यात्रा भी हम करेंगे कुछ पलों के लिए। सब अपने थॉट्स को एकदम रिलैक्स करके बैठेंगे तो जैसे जैसे हम कमांड देंगे उस यात्रा की ओर चलेंगे, तो उससे पहले सबके हाथों में सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं, तो कृपया उन गैजेट्स को साइलेंट करके साइड पे रख दें, अलर्ट एक्टिव होकर बैठ जाएं, एकदम सीधे बैठें। कुछ पाना है तो कुछ बुद्धि से निराला होंगे तो प्राप्ति कर सकेंगे। जैसे भी नंदनी बहन भी कह रहे थे कि पर जो पॉजिटिव थिंकिंग हमें कहां से मिलती है? जब हमारी बुद्धि क्लीन होती है। तो अभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं, ध्यान एकाग्र करने के लिए लंबी गहरी सांस लें, चरम चक्षुओं को बंद कर लें, महसूस करें सब विचारों से मुक्त, स्वयं को इस हॉल में बैठा हुआ अकेला महसूस करें, मेरे अंग संग आसपास कोई नहीं, एकदम अकेला, सर से लेकर पांव तक मेरा पूरा शरीर रिलैक्स है, शांत है, मन को कोई विचार नहीं दे, एकाग्र करें जो मैं सुन रहा हूं उस सुने हुए बात को, सुने विचारों को मुझे बुद्धि द्वारा चित्रांकित करना है, महसूस करें दोनों नैनों के मध्य बीच एक छोटी सी चमकती हुई प्रकाश, सफेद लाइट जो आत्मा है, सोल है, एनर्जी है, मस्तक से वो एनर्जी निकलकर मेरे आसपास के वातावरण को शांत कर रही महसूस करे, वो एनर्जी मेरे मन के विचारों को शांत और हल्का कर रही है। सारे दिनचर्या के हिसाब से जो भी बोझ मुझ बुद्धि पे विराजमान थे, हावी होकर बैठे थे, उन विचारों से मुक्त एकदम हल्की हूं महसूस करें। वो शांति की शक्ति मेरा कॉन्फिडेंस विल पावर बढ़ाने में मदद कर रही है, क्योंकि मैं आत्मा एक एनर्जी पावरफुल एनर्जी हूं, लाइट हूं। महसूस करें ये शांति के परकंपन चारों ओर के आसपास के वातावरण को भी शांत कर रही है। महसूस करें ये शांति मुझे अति प्रिय है, इसे पाने के लिए रोज कुछ ना कुछ पूजा अर्चना करता हूं। आज मुझे ये शांति की शक्ति बहुत गहरी महसूस हो रही है। ये एक शक्ति है, आनंद है, प्रेम है, खुशी है। इस शांति के शक्ति के सागर परमपिता परमात्मा सूर्य चांद तारागण से भी पार की दुनिया के रहने वाले मुझ आत्मा पर शांति की किरणें बिखेर रहे हैं। वो शांति की शीतल किरणें मुझे स्पर्श हो रही है। परमात्मा शिव के सानिध्य का मुझे बहुत शांत स्वरूप अनुभव हो रहा है। परमात्म शक्तियों से भरा हुआ हाथ मेरे सर के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। महसूस करें ये पॉजिटिव एनर्जी मेरी विचारधारा को पॉजिटिव बनाने में मददगार है। मुझे इस शांति की शक्ति से अपनी नकारात्मक ऊर्जा परिवर्तन कर सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही हूं। मेरा चिंतन सकारात्मक, सोच सकारात्मक, शक्ति सकारात्मक, अनुभूति सकारात्मक, मेरी लेखनी भी सकारात्मक, दृष्टि भी सकारात्मक, नजरिया भी सकारात्मक, परमात्म शक्तियों से भरे हुए इस अनुभव को स्वयं में समाते हुए, रिलैक्स फील करते हुए, पुनः इसी हॉल में स्वयं को बैठा हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपनी चरम चक्षुओं को खोलकर शांत वातावरण को देखें और महसूस करें। ओम शांति, ओम शांति।
मेडिटेशन से चार्जिंग मैं समझती हूँ हम सब हो गए, फ्रेश हो गए। आज के सत्र के हमारी पूनम दीदी ने हमें आत्मिक बल भरने में मदद किया, दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस प्रकार रोजाना आप जहाँ भी कार्य करते हो, चाहे आप आपके कार्यक्षेत्र पर चाहे घर में, हर घंटे में एक मिनट इस प्रकार साइलेंस में बैठ जाएंगे, अपने आप को परमात्मा से मेन सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तो आने वाला एक घंटा आप वो एनर्जी जो भगवान से ली हुई है वो आपकी लेखनी में, अपने कार्य व्यवहार में आपको दिखाई देगी, आपका इम्प्रूवमेंट आपको महसूस होगा, आपके विचारों में परिवर्तन आप अनुभव करेंगे। तो ये एक एक मिनट, हर घंटे में एक मिनट अपने आप को बीच बीच में इस प्रकार से भगवान से जुड़ करके चार्जिंग कीजिए, रिचार्ज कीजिए अपने आप को। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। हमारे आज के इस मंच के अन्य महानुभाव विशेष गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर शेर शुक्ला जी हैं, आप गाजियाबाद से हमारे मध्य हैं। एडिटर इन चीफ विजडम इंडिया डेली एंड न्यूज चैनल से आप वर्तमान समय अपनी सेवाएं देते हैं। इसे पूर्व आप LGSB सुभारती कॉलेज जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन रास बिहारी बोस यूनिवर्सिटी देहरादून में भी डायरेक्टर के पद पर आपने कार्य किया है और इंडिया प्रेस एसोसिएशन के भी आप प्रेसिडेंट पद पर रह चुके हैं। तो मैं शेर शुक्ला जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के विषय में वो अपने अनुभव युक्त वाणी रखे। भ्राता शेर शुक्ला जी।
ओम शांति। परिचय महत्वपूर्ण नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं एक सुधार कर दूं तो ताकि मेरे विश्वविद्यालय तक बात चली जाए तो कोई ऐसी बात ना। मैं वर्तमान में भी वहां पर निदेशक के पद पर हूँ भारतीय विश्वविद्यालय में। अब हम विषय पर आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में ही अपनी मैं पूरी बात को कंप्लीट कर दूं। बहुत विद्वान जनों ने अपनी अपनी बातें यहां पर कही हैं और मेरे भी दृष्टिकोण से जो इस विषय पर जो समझ में आएगा मैं भी अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। मूलतः विषय यह है कि ये जो मीडिया का नया ट्रेंड जो पैदा हुआ है ये समाज के लिए किस तरह से लाभकारी हो सकता है या किस प्रकार से लाभकारी हो रहा है, जो मूल विषय है। बिना भटके हुए कम समय में मैं अपनी बात इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर रखना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं नई मीडिया, वैसे यहां पर जो वर्ड लिखा है न्यू ट्रेंड्स इन द मीडिया, तो मैं उसको न्यू मीडिया कह दे रहा हूं बात ताकि आसान हो जाए। जब हम नई मीडिया की बात करते हैं तो उसके पहले हम ये जाने कि पुरानी मीडिया क्या है। बहुत पहले नहीं जाते हैं, एक सामान्य तौर पर अध्ययन करें हम कह सकते हैं कि अखबार के काल को जब हम प्रिंट मीडिया में खबरें पढ़ा करते थे वो हमारा एक पुराना तरीका था। उसके बाद रेडियो आया हमारे बीच में, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, यहां तक हम कह देते हैं पुराना मीडिया। कोई ऑफिशियल इसका क्लासिफिकेशन बाय द वे नहीं है, हमारे बीच में सर बैठे हैं जामिया इस्लामिया के भी सर बैठे हैं, कोई ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको पुराना मीडिया कह देते हैं। नया मीडिया वहां से शुरू होता है जब पोर्टल पर पत्रकारिता होने लगी और जब वेबसाइट पर जब लोगों ने लिखना शुरू किया वहां से नई मीडिया ने जन्म लिया। अब वो नई मीडिया आगे पहुंचा, फिर उसके बाद में सोशल मीडिया पर आया, फिर वहां पर वो विजुअल्स में आया, जब आपको जब फ्री में नेट मिलने लगे और जब आपके देश में जब नेट की जब स्पीड बढ़ी तो वो जब वीडियोज के रूप में मीडिया आने लगा, वो यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी, तमाम जगहों पर आने लगे। और अब एआई के ऑटोमेटेड न्यूज फॉर्मेट्स भी हमारे बीच में हैं। तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है पुरानी मीडिया और नई मीडिया का। अब नई मीडिया आज की डेट में पुरानी मीडिया से बहुत आगे निकल चुका है। उसके नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं, सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह हो सकता है कि नया मीडिया बहुत आगे गया है पुरानी मीडिया से। इसका जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जब पुरानी मीडिया की हम बात करते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए आपके लिए जरूरी था कि आप अखबार को पढ़ें, अखबार ले आइए आपके घर आएगा आप अखबार पढ़ेंगे। रेडियो के लिए आपको रेडियो पे सुनना जरूरी था, आपके पास रेडियो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आपके पास एक टीवी होना चाहिए। लेकिन इस नई मीडिया ने एक कमाल तो कर दिया कि एक डिवाइस में आपको सब दे दिया, सब कुछ आप उसी एक में ले लीजिए। इजी टू कैरी, इजी टू गो थ्रू, आसानी से आप कैरी कीजिए, आसानी से आप उसको देख लीजिए। तो ये जो सुविधा दिया एक डिवाइस का, मुझे लगता है कि इसने बहुत बड़ा माइलेज ले लिया इन कंपैरिजन ऑफ पुरानी मीडिया के कंपेयर में। अब ये जो नया डिवाइस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आप पूरी नई मीडिया को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये आज की डेट में पूरी दुनिया में 60% लोगों के पास में है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति अपने आप में एक मीडिया हाउस है, हर व्यक्ति अपने आप में आज की डेट में मीडिया हाउस बन चुका है। अब ये जो नया मीडिया हाउस बना, जो नई टेक्नोलॉजी आई, तो इस पर जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तो मैं आपके इसके कुछ फायदे गिनाऊंगा, फिर मैं इसके कुछ आपको नुकसान भी बताऊंगा, और नुकसान बता के बात हम लोग खत्म नहीं करेंगे, उसका समाधान क्या हो सकता है इस पर भी मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी रखने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा फायदा जो मुझे समझ में आता है कि मीडिया जो है वो, कई लोग मेरी बात से असंतुष्ट हो सकते हैं, मीडिया जो है वो बड़े कई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से मुक्त हो गई है। पहले क्या था कि वन वे कम्युनिकेशन था, अखबार में कुछ छप गया तो आपको उसको पढ़ना है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो बहुत छोटी सी जगह है पाठकों के पत्र, वो भी संपादक की मर्जी, उस पत्र को शामिल करे या ना करे। टीवी पर कोई चीज आ गई, आपको कहना है, आपके पास कहने के लिए कोई स्पेस नहीं है, आपको जो रिपोर्टर दिखा रहा है, जो एडिटर दिखाना चाहता है, किसी एजेंडे के तहत दिखाना चाहता है, या वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है, मैंने दोनों तरह की पत्रकारिता होती थी मैं कह रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार की भी हो, लेकिन जनता को अपनी बात कहने के लिए स्पेस उसमें नहीं मिला। तो अब क्या हुआ, अब जब नई पत्रकारिता आई तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से और ये कॉरपोरेट हाउसेस से ये मुक्त हो गई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, अभी आप देखें नेपाल में जो हुआ, जितनी बड़ी क्रांति वहां पर हुई, जिस तरह से वहां के पुराने पॉलिटिकल लीडरशिप को हटाया गया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को खत्म की गई, नए लोगों को जो मौका मिला, अगर आज ये नया मीडिया नहीं होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। आज हर व्यक्ति, आज आप किसी के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, किसी के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत नकारात्मक बिंदु है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको यहां इस कार्यक्रम में कोई चीज गलत लग रही है तो कल आप जाकर उसको फेसबुक पर लिख करके पूरे देश को बता दीजिए, आप इंस्टाग्राम पर बोल करके बता दीजिए, आप यूट्यूब पर बोल करके बता दीजिए। तो हर आदमी के हाथ में जब मीडिया आ गया तो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है, और आप इसको यकीन मानिए, ये इतना बड़ा फायदा है, हम कुछ भी कहना चाहते थे पहले, कुछ भी कहना चाहते, अब आप क्या करेंगे, किसी अखबार की आइडियोलॉजी आपको पसंद नहीं आ रही है, अब आप क्या करेंगे, नया अखबार निकालेंगे उसकी बात के लिए, बहुत मुश्किल है। क्या करेंगे, नया न्यूज चैनल चला देंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मीडिया सस्ता हो गया, आपके हाथ में मोबाइल है, आपने अपनी बात को कह दिया, आपका काम हो गया, आपने अपनी बात रख दी, पूरी जनता को जगह मिल गई है, देश के हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की जगह दी है इस नई मीडिया ने। तो ये एक मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट नजर आता है। दूसरा बहुत पॉजिटिव है सोशल मूवमेंट्स, अभी हमारे पहले के एक सर ने बताया मीटू आंदोलन, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न आज का नहीं है, बहुत पहले से हैशटैग मीटू चल गया। कितने वर्षों पुराने लोगों ने ला करकर महिलाओं ने अपनी बात को रखा, दुनिया के सामने रखा, और नतीजा यह हुआ कि कई लोगों का तो करियर खत्म हो गया, पॉलिटिक्स से लेकर के मीडिया तक के, जो अपने आप को बहुत बड़े धुरंधर कहते थे, जो अपने आप को प्रणेता कहते थे, जो अपने आप को बड़े विद्वान कहते थे, उनकी कलाई खुल गई, उनका करियर खत्म हो गया हर फील्ड में। निर्भया आंदोलन, इस देश में निर्भया की तरह बहुत कांड हुए, बहुत कांड हुए, लेकिन सोशल मीडिया ने हंगामा मचा दिया पूरे देश के अंदर। एक एक व्यक्ति मोमबत्ती लेकर के निकल पड़ा सड़कों पर, सरकार मजबूर हो गई। जब जनता इस तरह से आती है कि करोड़ों अरबों रुपए का बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया हुआ, करोड़ों रुपए अभी भी न्यूज़पेपर में जाते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी लगते हैं। अभी एक सर ने बताया कि 5 रुपए हम 4 रुपए कॉस्ट करते हैं और बाकी के पैसे विज्ञापन से आते हैं 20 रुपए के, तो पूरे पैसे विज्ञापन से नहीं आते हैं, ये भी आप जानिए। तो उस पर चंगुल लगा है, उस पर रोक लगी है, अब लोगों को डर लग रहा है कि अब हम निरंकुश नहीं है, हम निरंकुश नहीं है, आज हम कुछ भी कर दें, कुछ भी बोल दें, तो हमें रोकने के लिए ये नया मीडिया तैयार खड़ा है, ये हमारे खिलाफ आ जाएगा। और निर्भया कांड में वो चीज हुआ, निर्भया के नाम पर कानून तक बने, तो इसकी वजह सिर्फ ये थी कि न्यू मीडिया। अब एक बेनिफिट और बताता हूं, वो एक बड़ी चीज, सरकार, सरकार तो सर्वसंपन्न है, सरकार के पास तो हर सुविधा है, लेकिन मैं देहरादून से संपर्क रखता हूं। हमारे देहरादून उत्तराखंड में एक घटना हुई, आप लोगों ने पिछले वर्ष सुना होगा, धराली की घटना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। धराली की घटना हुई, अचानक एक प्राकृतिक आपदा आई और उसमें कई लोग मर गए। अब सरकार के पास इतनी तेजी से घटना हुई, कोई फीडबैक नहीं है, रेस्क्यू फोर्सेस जाएंगे तो काम कहां करेंगी, उनको काम क्या करना है उनको नहीं पता। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज बैठे थे, इनके रिपोर्टर्स को नहीं पता कि मुझे क्या करना है, एक दिन बाद वो पहुंच रहे हैं, सरकार को नहीं पता। तो क्या हुआ, मैं वहां पर उपस्थित, जितने भी न्यू मीडिया जिसको आप कह रहे हैं उनको मंगाया गया, उनको बैन करने के लिए नहीं, रोकने के लिए नहीं, वहां से फीडबैक ली गई कि वहां के रियल पोजीशन क्या है, और हमारी रेस्क्यू फोर्सेज अगर जा रही हैं, अगर हमारी सरकार वहां पर काम करना चाह रही है तो हम उस काम को करेंगे कैसे। मतलब यह है कि नई मीडिया इतनी मजबूत हो गई है कि आज की डेट में ट्रेडिशनल मीडिया, ये जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, ये बड़े बड़े अखबार, सरकार तक आज इन नई मीडिया को फॉलो कर रही है। बस कहने में थोड़ा शर्म लगती है कि एक आम आदमी कैसे पत्रकार बन गया, ये उनको थोड़ा पसंद कम आता है, लेकिन सच यह क्या सरकार भी और बड़े बड़े पत्रकार घराने भी आज ये जो नई मीडिया है इसको ये फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा चलिए तो बड़ी बातें हुई, कुछ एजुकेशन में ले लीजिए। पहले एजुकेशन का मुद्दा यह था कि आपको पढ़ने के लिए अपने घर से दूर जाना है, अच्छे टीचर्स आपको मिलते नहीं थे, आज आपको जो टीचर पसंद हो, जो संस्थान पसंद हो, आप 200, 400, 500 रुपए की फीस दीजिए, 1000 रुपए की फीस दीजिए, 10000 की फीस दीजिए, 1 लाख रुपए जो पहले 2-2 लाख रुपए में पढ़ाते थे, वो एजुकेशन आज आपके सामने आ गई है। दूर दराज गांव में बैठा हुआ व्यक्ति इस नई मीडिया की वजह से शिक्षित हो रहा है, बच्चे आज इस वजह से शिक्षित हो रहे हैं। अब वो जिम्मेदारी गार्जियन के ऊपर जो थी कि हम 2 लाख रुपए देंगे तब हम कोटा भेजेंगे बच्चे को मेडिकल की तैयारी कराने के लिए, कोई जरूरत नहीं है, अगर बच्चे में टैलेंट है तो घर बैठ करके पढ़ सकता है। इसके अलावा कई चैरिटेबल काम भी हो रहे हैं, कई क्राउड फंडिंग ऐसे पोर्टल्स हैं कि कई लोगों को मदद करते हैं, जैसे एक मिलाप है, मैं उसके बारे में जानता हूं, और भी होंगे, मुझे बहुत ज्यादा नाम नहीं पता है, जिनको जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, ये क्या करते हैं, उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करके उनकी मदद करते हैं। तो ये नई मीडिया का नया रूप है, ये नया रूप है जिसको हमें प्रशंसा भी करनी चाहिए, इनकी सराहना भी करनी चाहिए और इनको एनकरेज भी करनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी बात आती है, जब कहीं कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो उसमें कुछ कमियां भी जरूर होती हैं। ये संगठित वेंचर नहीं है, जैसे वो हमारे ट्रिब्यूनल सर नेथानी सर ने बोला कि जब अखबार में कोई खबर आती है तो सबसे पहले करेस्पॉन्डेंट भेजता है, फिर वो डेस्क पे जाता है, फिर वो न्यूज एडिटर के पास जाता है, तब वो जाकर पब्लिश होता है। यहां तो आपने लिया तुरंत बोल दिया। तो जो सबसे बड़ी क्राइसिस आई है न्यू मीडिया में, मैं नहीं चाहता कि न्यू मीडिया की चाल धीमी हो, मैं नहीं चाहता कि न्यू मीडिया की टेक्नोलॉजी कम पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ सुधार। क्या सबसे बड़ा जो संकट आया है नई मीडिया के सामने, वो है उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल, उसकी विश्वसनीयता का सवाल। जो चाहा वो लिख दिया, बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं। मैं अभी भी आपको बता दूं, आज आलोचना करने वालों को बता दूं, आप पूरा यूट्यूब छान डालिए, आपको 70% कॉन्टेंट तो सही मिलेंगे, 29% ने गड़बड़ कर रखी है। अब 29% ने क्या किया, पूरी की पूरी उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है। ये विश्वसनीयता को कायम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी क्या हुआ कि मणिपुर में कुछ घटनाएं हुई, वो राजनीतिक घटना है, मानवता से भी जुड़ी हुई घटना है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि कुछ विदेशी फुटेज ला करके मणिपुर की घटना में सरकार को बदनाम करने के लिए जोड़ करके पूरे देश में फैला दिए गए। सिंदूर कांड में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने वो फुटेज दिखा दिया जो पाकिस्तान में नहीं हुआ था, सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए। अब एक फैक्ट चेक उसके लिए अलग से लगाइए, लेकिन ये जो ना विश्वसनीयता, ये जो बहुत बड़ा सवाल है, और विश्वसनीयता कायम करने पर हम लोगों को मिलकर इस पर काम करना होगा, विश्वसनीयता। इसके बाद अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या है, मैं बताता हूं। दूसरा बहुत बड़ा जो नुकसान है नई मीडिया का, ये वैमनस्यता बहुत बढ़ा रहा है, दुश्मनी बहुत करा रहा है। कैसे वैमनस्यता कैसे बढ़ रही है, मैं जिस जाति से हूं, मैं जिस धर्म से हूं, मैं जिस क्षेत्र से हूं, मुझे अपने नजरिए से जो बात सही लगी मैंने किसी भी सोशल मीडिया के पोस्ट पर लिख दिया, बोल दिया, मुझे लगा मेरा काम हो गया। लेकिन वो जब मैं लिखा, जब मैंने बोला, तो मेरा जो नजरिया था मुझे अपनी जात को लेकर के था, मुझे अपने धर्म को लेकर के था, मुझे अपने क्षेत्र को लेकर के था। अब उस पर, उस क्रिया पर जब प्रतिक्रिया आती है, फिर और कड़ी प्रतिक्रिया आती है, फिर और कड़ी प्रतिक्रिया आती है, और इससे आप देखिए पूरा का पूरा सोशल मीडिया वैमनस्यता, दुश्मनी से भर गया है। यह दूसरा बड़ा चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज भी मैं जल्दी बताता हूं, सबसे बड़ा एक चैलेंज और आ गया है कि लोगों की प्राइवेसी खतरे में आ गई है। हमको कुछ भी मिला बिना सोचे समझे किसी के बारे में भी, हमने उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। तो ये कुछ चैलेंजेज भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके पॉजिटिव्स के साथ में अभी हूं, मैं चाहता हूं इसकी पॉजिटिविटी बढ़े। अब इस पर रोक कैसे लग सकती है, बस मेरी 2-3 सलाह है, छोटी छोटी सी सलाह है। एक तो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, और एक बहुत अच्छी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, सबने सेल्फ रेगुलेशन पॉलिसी अपना ली है। बस फर्क यह है कि कोई ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आप YouTube पर कोई भी आप वीडियो डाल दीजिए, उसको अगर लगा, उसका AI स्टडी कर लेगा, अगर इसको लगा कि आप इसमें जात की बात कर रहे हैं, आप इसमें लड़ाई की बात कर रहे हैं, या इसमें कुछ झूठ है, अगर उसका AI पकड़ पाया तो वो तुरंत आपका वीडियो वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। एंड सेम थिंग हैपनिंग विद द अदर प्लेटफॉर्म्स ऑफ द सोशल मीडिया, वहां पर भी ये चीजें हो रही हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। और दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि एक ट्रेनिंग जरूर हो, क्योंकि पत्रकार का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई चीज देखा और उसको जैसे तैसे बोल दिया। कम से कम पहला और एक छोटा और एक सरल फॉर्मूला तो ये जरूर है कि मैं कुछ भी लिख रहा हूं, कुछ भी बोल रहा हूं, तो एक बार मैं जरूर इस पर सोच लूं कि मैं जो ये बोलने जा रहा हूं, जो मैं लिखने जा रहा हूं, मेरे अलावा इसका समाज पर, समष्टि पर क्या असर पड़ेगा, इससे राष्ट्र और समाज कितना प्रभावित होगा। तो ये पहली शुरुआत है, यहां से करें, आगे और चीजें बेहतर होती जाएंगी। धन्यवाद, आपने मौका दिया, मुझे सुना,
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता शेर शुक्ला जी। न्यू मीडिया के अपने दोनों पक्ष को हमारे सामने रखा। हमारे समय की सीमा आगे बढ़ती है, अगला सेशन भी है, तो अब समापन की ओर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। सिस्टर सुषमा शर्मा जी हमारे बीच में है, गुवाहाटी से आप हमारे मध्य पधारे हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रेडियो में आप अपने वर्तमान समय कार्य कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आज के विषय पर वो अपने विचारों को रखे हमारे बीच। सिस्टर सुषमा जी।
ओम शांति। जैसा कि बहन जी ने बताया कि समय की कुछ कमी है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी जितना कम से कम समय में, मैं काफी कुछ सबने बोला है, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा समराइज करूंगी। तो मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मेरा हृदय से नमस्कार, और साथियों आपको भी नमस्कार। मैं गुवाहाटी से आती हूं, मैं ऑल इंडिया रेडियो को मैंने सर्व किया 30 साल, उससे पहले कुछ दिनों न्यूज़पेपर में भी काम किया था। तो आज जो मीडिया है, आज मीडिया के जो बदलते रुझानों के बारे में हमारा टॉपिक है और इसको किस तरह से समाज के हित में हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो आज का जो मीडिया है वो हम कहेंगे कि पूरी तरह से बदल चुका है। पहले जहां पर मीडिया की जो हमारी शुरुआत होती थी सुबह के अखबार से और रात को 9 बजे के न्यूज तक, ज्यादातर यही होता था। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, रेडियो, दूरदर्शन, ज्यादा फिर चैनल्स आए और अब पिछले 5-7 सालों से जो डिजिटल मीडिया है और आज एआई के युग में एक महान बदलाव हुआ है। आज कोई भी घटना कहीं भी घटे, हमें इंस्टेंटली उसके बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। न्यूज बनानी है, एआई है, आप फटाफट उसको बना के अपलोड कर सकते हैं। ये मुख्य एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका कि सही उपयोग ही हमें समाज को लाभ देगा पूरा। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि आज भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, जैसा कि हम यहाँ पर सम्मेलन में आए हैं, इस तरह से अगर छोटी छोटी ट्रेनिंग्स भी होती हैं तो सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे मीडिया के संस्थानों में होती रहती है। दूसरा आज का जो ट्रेंड है वो है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के जो ऑडियो वीडियोस, यही ज्यादा चलते हैं। लोगों में इतना धैर्य नहीं रहा कि वो लंबे समय तक देख। पॉडकास्ट की बात अलग है, वो कोई विशेष व्यक्ति के साथ या वो लंबी बात हो तो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये तो लंबा खींचेगा, तो कुछ ही लोग उस जिनको इंटरेस्ट होता है वही वो देखते हैं। बाकी जो ज्यादातर जो पब्लिक है वो शॉर्ट टर्म वीडियो को ही ज्यादा प्रेफर करती है। मोबाइल फर्स्ट वर्टिकल मस्ट, आज का जो सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो कि हम एक मोबाइल सेट से ही हम सब जानकारियां लेते हैं। टीवी भी आजकल घर में अकेला पड़ा रहता है कि कोई तो मुझे देखे, लेकिन क्योंकि सबके पास अपने अपने मोबाइल है और सबका अपना अपना मीडिया है। आज घर में अगर 4 लोग हैं, चारों की पसंद अलग है। पहले होता था कि अगर कोई स्पोर्ट्स देख रहा है तो सबको वही देखना पड़ता, आज वो मजबूरी नहीं है। इसीलिए एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से वो भी है कि पहले परिवार एक साथ बैठकर बड़ा एंजॉय करते थे। दूरदर्शन में एक पिक्चर चित्रहार आते थे, सब एक साथ बैठ के खाना पीना भी होता था और बड़े आनंद होता था। आज क्या है, चुपचाप हर आदमी अपने मोबाइल में ही डूबा हुआ है। ये एक नेगेटिव साइड है, लेकिन इसको हम इनकार नहीं कर सकते कि वर्टिकल मीडिया ही आज का ट्रेंड है। आज क्रिएटर ही चैनल है। कोई भी इंसान एक मोबाइल लेकर, जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कई बार उनकी भाषा भी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो भी कई बार इतना अच्छा करते हैं, तो ये एक पावर मिली है ये बदलते जो ट्रेंड्स आए हैं उनसे। तो मास मीडिया नहीं, मेरी मीडिया आज ज्यादा चल रहा है। कम्युनिटी फोकस्ड मीडिया भी हैं, कुछ कम्युनिटी रेडियोज आजकल चलते हैं और कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको में एक किसी मकसद को लेकर उसमें कार्य किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत कुछ होता है आजकल, और मीडिया की जो पावर है बताई है कि जो सोशल मीडिया से कितने बड़े बड़े बदलाव आ गए बहुत कम समय में। तो ये अच्छी भी बात है, बहुत फास्ट काम होता है, लेकिन इसमें खतरा भी है। अगर कहीं झूठ के पीछे अगर सब जा रहे हैं, उस पर ही अगर भरोसा कर लिया तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं चॉइस करना पड़ेगा कि क्या इसमें सही है क्या नहीं है, और खबर के पीछे की भी खबर हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। एनिमेटेड वीडियोस आजकल काफी पॉपुलर हैं। सॉल्यूशन जर्नलिज्म, आज किसी भी समस्या के बारे में अगर हम कुछ देखते हैं तो हम सिर्फ यही नहीं चाहते कि लोग दिखाएं कि लो इधर बाढ़ आ गई, इधर भूकंप, साथ के साथ हम ये उससे आशा करते हैं कि वो कुछ सॉल्यूशन भी बताएं। तो ये भी आजकल का जो पॉपुलर मीडिया है उसमें ये चलन हो रहा है। इको चैम्बर और एल्गोरिदम, इसकी भी चर्चा मैं करूंगी कि आज आप मोबाइल में क्या देखेंगे हर बार आप डिसाइड नहीं कर पाते। आपका जो आप जो देखते हैं उसी हिसाब से जो इको चैम्बर और एल्गोरिदम आपका डिसाइड करता है कि आप फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टा में आप क्या देखेंगे और किस क्रम में देखेंगे। तो यहां तक मीडिया हमें कंट्रोल करता है, तो हमें इसकी बारीकी को भी जानना है और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि इसको सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए कि हमें पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, बकवास हेडलाइन देंगे कि आप देखकर चौंक जाएंगे। ये बहुत हमें यह हेडलाइंस मिलते हैं, लोग फटक से सोचते हैं क्या हुआ, लेकिन एल्गोरिदम आपको फिर बढ़ावा जरूर देगा लेकिन आप उसमें कुछ खास आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती है। तो इसके बारे में भी हमें सचेत रहना है। तो आप मोबाइल कैसे यूज करते हैं, आप किस चीज पे आप रुकते हो, किस चीज को लाइक करते हो, ये भी डिसाइड करता है कि आपके मोबाइल में बार बार क्या आएगा। और आप जो ज्यादा देखेंगे आप वैसे ही बनते जाएंगे। और इसका मैं सबसे बुरा प्रभाव ये समझती हूँ कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, बच्चे हैं घर में, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनका पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उनको इतनी बातें टेक्निकलिटीज, कुछ मामले में हमसे आगे हैं लेकिन कुछ चीजें उन्हें अभी भी नहीं पता है। और हम देखते हैं कि कहीं कहीं वो बहुत गहराई तक एडिक्शन यहां तक की हो चुका है। तो इसके मामले में भी हमें, मैं समझती हूँ कुछ रेगुलेशंस जरूर सरकार को या हमें समाज में कुछ करना चाहिए जो हम इस जनरेशन को भी इस बीमारी से बचा सके। आज एक बच्चा, हर एक के पास मोबाइल है, वो क्या देख रहा है, वो पासवर्ड से अपना मोबाइल लॉक करता है और कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बाद में लगता है अरे माँ बाप थे घर में सब थे और फिर ये कैसे हो गया। तो यहां पर मुझे लगता है कि जो कि जैसा यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि स्पिरिचुअल जो माहौल है, स्पिरिचुअलिटी को भी हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने फैमिली में इसको लाना पड़ेगा और ब्रह्म कुमारी इसमें हमारी बहुत अच्छे से मदद करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रिंट मीडिया ने हमें जानकारी दी, टीवी ने इमोशन, इंटरनेट ने आवाज भी दी, लेकिन ये नए ट्रेंड्स हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी दे रहे हैं कि नीयत ठीक रखने की, हम किस इंटेंशन से हम इनको यूज करते हैं। ये सब टूल्स हैं, अगर आप इसे अच्छी तरह से यूज करेंगे तो ये आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, समाज का बहुत भला कर सकते हैं, और उसी को अगर आप गलत यूज करेंगे तो समाज का बहुत बुरा भी कर सकते हैं। जाते जाते हम यही कहेंगे कि मीडिया का धर्म वही रहेगा, अंधेरे में रोशनी बनना। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त।
बहुत बहुत आभार बहन सुषमा जी का हम सबको नई रोशनी देने के लिए, एक चेतना, एक दिशा आपने दी। आपने जो जिक्र किया कि मोबाइल में सबका अपना अपना पासवर्ड रहता है, वे कुछ महीने पहले हमारा जहां अहमदाबाद में सेवा केंद्र है उसके नेक्स्ट बाजू वाला एक घर है, फैमिली रहता है, उसका एक यंग बच्चा 32 इयर्स का, कुछ रिनोवेशन चल रहा था घर के ऊपर, वो देखने गया छत पर, और छत पर देखा और कुछ देखते देखते उसका पांव फिसल गया तो तीसरी मंजिल से नीचे गिरा। जैसे ही गिरा उसका ब्रेन हेमरेज हुआ और वहाँ ही उसकी डेथ हो गई। फादर मदर सब कुछ घर में ही थे, उसकी वाइफ भी थी, तो सारे उसके बिजनेस की सारी चीजें उसके मोबाइल में थी और उसका मोबाइल उसने अपने फेस डिटेक्शन से लॉक किया हुआ था। और हम सब जानते हैं कि जब आंख की पुतलियां चल रही होती है, जीवित है, तभी वो फेस डिटेक्शन काम कर रहा है। उसके पिताजी ने 1.5 लाख रुपया खर्च किया उस मोबाइल को खोलने के लिए, उस पासवर्ड को ओपन करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया और उसका करोड़ों का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया। और आज वो बिल्कुल एकदम से अपने पिता, अपने बेटे को भी खोया और पैसे भी चले गए। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी प्राइवेसी रखे, लॉक रखे, लेकिन हमें अपने परिवारों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे उदाहरण भी हमें संदेश देते हैं। एक एक्सीडेंट हो गया था एक रोड पर, मैं वहां से गुजर रही थी, सब लोग इकट्ठे हो गए तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई हुआ क्या है। सब लोग जब इकट्ठे हुए, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, कोई ये कर रहा था, तो हम दो बहनें थी, हमने कहा हमारी भी फर्ज बनती है देखे। तो हमने तुरंत उसके मोबाइल को देखा, मोबाइल वैसे लॉक था लेकिन उसका जो होम पेज था उसके ऊपर उसका पिताजी का फोन नंबर था। तो किसी ने वो नहीं देखा और सब फोटो रील वो सब बनाने लग गए। तो फिर हम दोनों बहनों ने वो नंबर लिख के उसके पिताजी को फोन किया और हेल्प किया। तो उसके पिताजी ने कहा देखो लोग तो हमारे बेटे बेटी का एक्सीडेंट को देख करके न्यूज बना रहे हैं और आप एक ऐसे हो जो हमको उसके मोबाइल देख करके फोन करके इन्फॉर्म करके इनको हॉस्पिटल तक ले गए। तो हम एक मीडिया पर्सन है तो हमें मानवता को भी देखना जरूरी है। केवल समाचार बनाना ये हमारा काम नहीं है, हमारा पहला धर्म मानवता की रक्षा करना भी है। और इसी श्रृंखला में आज के इस विषय को अधिक हम सबको मार्गदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता कुलदीप भाई जी को। उनके सरनेम में कुछ आगे पीछे हो गया इसलिए मैं सरनेम नहीं कहना चाहूंगी, दत्तवालिया जी भी और दत्तावालिया जी भी। तो आप फॉर्मर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल पीआईबी से हैं और भारत सरकार के बहुत महत्वपूर्ण विभागों में आपने लंबे 36 इयर्स तक अपने सेवा दी है, बहुत अनुभव है आपको। भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में आपने मीडिया और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आपने जो कार्य किया है, तो मैं अधिक समय न लेते हुए आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आइए और आज के विषय पर अपने अमूल्य विचार हमें रखिए। भ्राता कुलदीप सिंह जी।
ओम शांति। आज का जो विषय है इसके ऊपर काफी विचार हुए और इसके बारे में मुझे क्या कहना है, मैं कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त रूप में आपके सामने अपने विचार रखूं। सबसे पहले जो मीडिया का एक ट्रेंड जिसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं, शुरुआत करता हूं मैं एक गांव से। आज से 50 साल पहले वहां पे अखबार कैसे पहुंचता था, आज का अखबार शाम को 5 या 6 बजे। वो क्यों? क्योंकि उस गांव में दो बसें जो हैं वो शाम को आती थी और सुबह वापस जाती थी, तो जब वो जाएंगी तो उस टाइम पे अखबार उन्हें उपलब्ध नहीं होगा। जब शाम को वो बसें आएंगी तो अखबार लेके आएंगी। इसका मतलब है कि आपको पढ़ने का अखबार शाम को मिला। जैसे जैसे तरक्की होती गई उस पे और रूट बसें चलना शुरू हो गई, तो आपको वही अखबार जो शाम को आता था सुबह 8-9 बजे मिलना शुरू हो गया। अब देखिए, ये तो बात जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सुबह चाय के टाइम पे दिल्ली जैसे शहरों में या महानगरों में अखबार का महत्व और उसका फायदा, वो गांव में और देहातों में कहां सोचा जा सकता था और कहां सोचा जा रहा है आज के दिन में। अब वो अखबार जो पहले शाम को मिलता था फिर सुबह हुआ, आज वही अखबार मोबाइल के जरिए सुबह 4 बजे या 5 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उसी गांव में उपलब्ध होता है। तो ये तो एक मीडिया का ट्रेंड है जो टेक्नोलॉजी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से धीरे धीरे बढ़ता गया। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ। देखिए, जैसे हम लोग खबरों के साथ अपने आप को अपडेट करते हैं, रिपोर्टिंग का टाइम है, कोशिश क्या होती है, हर आदमी सोचता है कि जो खबर मैं दूं सबसे पहले दूं, मेरी रिपोर्टिंग सबसे पहले जाए। लेकिन उसके पीछे भी एक तथ्य छुपा हुआ है कि क्या जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं आपने उसको वेरीफाई किया, या आपने जल्दी के चक्कर में जो आया जो मिला उसको आगे पहुंचा दिया। तो इससे क्या होता है कि जो जानकारी लोगों के लिए फायदेमंद होनी चाहिए वो कई बार बहुत नुकसान कर देती है। सरकार के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन, ठीक है वो समाचार देने में थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन एक बात की सच्चाई है कि जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे उस खबर को वो प्रसारित नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी माध्यमों के लिए या बाकी समाचारों के लिए ये कह रहा हूं कि भाई आप लोग जो है वो जल्दी में गलत प्रसारण कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, हम लोगों की ट्रेनिंग, हम लोगों का एक्सपीरियंस और जो एक दूसरे से जो टीआरपी की बात करते हैं उस चक्कर में हम कोशिश यही करते हैं कि सबसे पहले हमारा समाचार जाए। आने वाले इस टाइम में जैसे जैसे इंटरनेट आया, एप्स डेवलप हो गई, अब क्या हो रहा है कि जो स्टेशन हम लोग देहातों में सुनते थे एक रेंज होती थी ब्रॉडकास्ट के लिए, अब उसका जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन हो गया। आप ऐप के जरिए रेडियो को किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए वहां सुन सकते हैं। तो उससे क्या फायदा हो गया कि जो चीज हम सोचते थे कि नहीं ये एक लोकलाइज न्यूज है, इसकी जो जरूरत है वो बाहर के लोगों को नहीं है। मेरा मानना यह है कि इस समय में मोबिलिटी इतनी हो गई है कि देहातों के लोग शहरों में जाके, विदेशों में जाके काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कल्पना करें कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है एक गांव के अंदर, वो सरकार ने जब 2005-06 में वो नीति बनाई थी वो ये सोच के बनाई थी कि उस देहात के 10 से 15 किलोमीटर के जो लोग हैं, उस कम्युनिटी के जो लोग हैं, अपनी लैंग्वेज में अपना लोकल कंटेंट जनरेट करेंगे और अपनी कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। साथ में ये भी होगा कि सरकार की जो डेवलपमेंट स्कीम्स होंगी वो भी लोकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। क्या हमने कभी ये सोचा कि जो हमारे लोकल लोग बाहर हैं उनके साथ या उनका भी कोई इंटरेस्ट है कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है? ये सारी चीजें इंटरनेट की वजह से जैसे ही एप्स डेवलप हुई तो दुनिया के हर कोने में उपलब्ध हैं। इससे डबल बेनिफिट है, टू वे कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, कि अगर वो लोग वहां से कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो उनके लोग उस एरिया के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर शेयर कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी के बारे में जो जानकारी है वो भी उनको रेगुलरली मिल जाती है। अब हम आते हैं न्यू मीडिया, सोशल मीडिया की बात हो रही है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमने जो कहना है वो तो कह दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें काफी सोच समझ कर आगे प्रसारण करना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं अपने आप कन्विंस्ड हूं या नहीं लेकिन उसको इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दूंगा अपने ग्रुप के अंदर अपने लोगों के लिए। जब मैं ही कन्विंस नहीं हूं तो मैं दूसरे लोगों का क्या भला कर सकता हूं, क्या कल्याण कर रहा हूं, जिसको हम कह रहे हैं सोसाइटल बेनिफिट। मीडिया के थ्रू बेनिफिट तो तब होगा, सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेल्फ से मैं अपने आप कन्विंस हो जाऊं कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये सही है और ये बाकी लोगों के लिए भी हितकारी होगा, उनके लिए भी फायदेमंद होगा। अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूं तो मुझे वहीं पे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए और उस व्हाट्सएप मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने से रुकना चाहिए, मेरा अपना मानना ये है। अब आई बात कि ये सारा क्यों हो रहा है, ये मशीनरी और जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम क्या उसके गुलाम बनते जा रहे हैं या हम उसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? मेरा मानना है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को भी चलाना है, अपने आप को एजुकेट और डेवलप करना है। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने आप को उसी रफ्तार से चलाएं। कहने को तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, आज के जमाने में सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारी जो जिंदगी है वो टाइम स्पीड के हिसाब से चला दी है। जैसे टाइम चल रहा है हमें भी उसी स्पीड से चलना पड़ रहा है, और अगर हम थोड़ा सा पीछे रह जाएं तो अपने आप को पिछड़ा हुआ समझ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस ओवरऑल जर्नी में जो काम हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान कर रही हैं, इनकी तीन चार चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि पिछले 10 से 15 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हूं, कि सबसे पहले इस तरह के जो हमारे लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस करना, देश और विदेश के लोगों को जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा काम है। और इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, छोटे सी एक मिनट का मैसेज अगर सुबह मुझे 4 बजे मिलता है और उसको अगर मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, तो आप सोच सकते हैं कि उससे कितना फायदा होता होगा। अच्छा, आधे घंटे का अगर आपके पास टाइम है तो अमृत बेलाद प्रोग्राम आएगा, उसको सुन लीजिएगा। और ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए मोबाइल पे उपलब्ध हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जितना अच्छा काम हो रहा है, इसमें हम लोग अपना सहयोग करें। अपनी तरफ से जो भी हमने पिछले 2-3 सेशंस में यहां पे चर्चा करी, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम जो काम करें वो भले के लिए करें। अब क्योंकि मीडिया के लोग यहां पे हैं, तो मैं 1 या 2 मिनट मीडिया के ऊपर भी जरा शेयर करना चाहूंगा। हम लोगों का एक उद्देश्य होता है कि भाई हम मीडिया हाउस में या मीडिया वाले फील्ड में क्यों आए हैं। हमारा जो पर्पज है वो रहना चाहिए कम्युनिकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। अगर हमने बिजनेस या दूसरे फील्ड में अपने आप को इन्वॉल्व किया तो शायद हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। मीडिया के फील्ड में अब इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हम लोग कभी भी ये ना सोचें कि क्योंकि मैंने ये प्रोफेशन चूज किया है, मुझे जो मिला मैंने वो लोगों को परोस दिया। रिसर्च हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम पूरी तरह से अपने आप को सबसे पहले एजुकेट करें। अब जो जानकारी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेट से जो है चैट जीपीटी से उठा लिया, एआई से उठा लिया, ये सारी चीजें क्या हैं? ये चीजें वो हैं जो कि ग्लोब के अंदर हम लोगों ने ही फीड की हैं। तो क्या हर एक आदमी का हम ये मान के चलते हैं कि जिसने जो कंटेंट पोस्ट किया वो सही होगा? ये मानना भी गलत होगा। तो अगर जो चीज आप मीडिया से उठाते हैं, रिसर्च करते हैं, इंटरनेट से उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा। उस मशीन के पीछे जिस आदमी का हाथ है, जो आदमी उसको कंट्रोल कर रहा है, हमें उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और उस फील्ड में मैं कहता हूं ये सारे साथी जुड़े हुए हैं और सबको मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता कुलदीप सिंह जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे सेशन के चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमार सुशांत भाई। आप मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। ब्रह्मा कुमार इस मीडिया विंग को प्रमोट करने के लिए आप समय प्रति समय वर्कशॉप, सेमिनार, कैंपेन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी अपना साथ सहयोग देते हैं। फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं। ब्रह्मा कुमार सुशांत भाई से मैं आमंत्रित करती हूँ आज के सेशन के अध्यक्षीय प्रवचन के लिए।
ओम शांति। समय बहुत हो गया है, हम निचोड़ में कुछ बात आपके सामने रखेंगे। सम्माननीय मंच, आदरणीय सभा, सभा में उपस्थित मेरे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया में काम करने वाले मेरे पत्रकार बंधुगण, मीडिया फ्रेटर्निटी तथा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई और बहनें, आज जो ये हमारे मंचासीन जो प्रबुद्ध वक्तागण है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही। और आज की जो टॉपिक है नेविगेटिंग न्यू ट्रेंड्स इन मीडिया फॉर सोशल बेनिफिट्स और सोशल बेनिफेक्शन, तो उसके ऊपर उन्होंने जो सार गर्भक बात सुनाई, तो थोड़ा सा हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा उसका अवलोकन कर लेते हैं। समाज के, जैसे अरुण जी ने कहा, अरुण नेथानी जी ने कहा कि समाज के हित में जो ट्रेंड्स सार्थक है वही स्वीकार्य है। समाज के हित में जो ट्रेंड्स सोशल मीडिया में या न्यू मीडिया में जो चल रही है, जो सार्थक है, जो सरोकारी है, वही स्वीकार्य है। गंगाधर भाई ने भी कहा कि चेतना जितना शांत, शीतल, स्थिर सकारात्मक और संतुलित होगा उतना ही सामाजिक हित को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर सुरेश वर्मा जी ने बहुत रोचक ढंग से हमें एड्रेस किया और उनका यही निचोड़ था कि ट्रांसफॉर्मेटिव और ट्रांसफॉर्मेशनल रोल ऑफ मीडिया कंटेंट शुड बी द न्यू ट्रेंड इन मीडिया। मीडिया कंटेंट उसमें मीडिया कंटेंट में संवेदनशीलता एवं आध्यात्मिकता का समावेश जरूरी है। इसी तरह डॉक्टर सोमनाथ भाई ने कहा सोशल मीडिया में हैशटैग को न्यू ट्रेंड बनाया है जिसको पॉजिटिव और हितकारी बनाना जरूरी है, क्योंकि ये जो सोशल हैशटैग जो है उसका दो उपयोग भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बनाना और हितकारी बनाना जरूरी है। तो शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही है, न्यू मीडिया इज एन इफेक्टिव न्यू ट्रेंड इन मॉडर्न मीडिया टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे न्यू ट्रेंड सोशल मीडिया न्यू मीडिया इफेक्टिव न्यू ट्रेंड। और सुषमा शर्मा जी ने कि नीड फॉर मीडिया ट्रेनिंग इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस शॉर्ट स्पान वीडियोज वर्टिकल मीडिया not mass media but my media is the new trend, solution centric media is the new trend and should be the new trend, spirituality should be new trend in modern media, today's media। और कुलदीप सिंह जी ने कहा careful sensible and responsible use and application of self and new media technology। तो ये बहुत यही हमारा आज की जो सेशन है सेशन का यही सार था। हम यही कहेंगे निचोड़ में कि मूलतः दो प्रकार की मीडिया हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं, एक है जड़ मीडिया दूसरा है चेतन मीडिया। मीडिया माना माध्यम, मीडिया माना मीडियम। तो इस संसार में दो मीडिया हैं, चेतन मीडिया जड़ मीडिया को कंट्रोल करता है, जड़ मीडिया को इस्तेमाल करता है। तो जितना हम चेतन मीडिया यानी ह्यूमन बीइंग जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो जितना हम उसको जो है समाज की हित में सरोकारिता में जितना इस्तेमाल करेंगे उतना जड़ मीडिया हमें जो है सरोकारी होगा, उतना ही सार्थक होगा, उतना ही हितकारी होगा। तो इसलिए चेतन मीडिया को भी जब चेतन मीडिया ज्यादा जड़ मीडिया की चेतना में प्रभाव में प्रभावित हो जाता है तो फिर वो चेतन जड़ मीडिया जो है चेतन मीडिया के ऊपर हावी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जो मीडिया जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, जो न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म बनाया है सोशल मीडिया हो न्यू मीडिया हो AI हो, अगर उसका सही यूज ना हो सही एप्लीकेशन ना हो समाज के हित में ना हो मानवता के हित में ना हो उसका मिसयूज हो उसका अब्यूज हो तो फिर वो खतरे की घंटी है, जिसको हम कहते हैं वो एक भस्मासुर बन जाता है, एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाता है हु इज ड्यूअर्स इट्स ओन क्रिएटर, अपनी क्रिएटर को अपनी रचयिता को ही वो ग्रास कर लेता है। तो इसलिए ये हाल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें अपने आंतरिक चेतना को अंतरात्मा को जितना हमारे मन बुद्धि जितना आत्मिक होगा उतना हमारे ऊर्जा जो हमारे अंदर जो सुप्त अवस्था में है विद्यमान है वो ऊर्जा का जो है विकास होगा विकसित होगा हमारे अंदर से, तो फिर हम चेतन मीडिया को अच्छी तरह से और सोच समझ के केयरफुली सेंसिबली और रेस्पॉन्सिबली हम उस मानवता के हित में समाज के हित में हम उपयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यही निचोड़ है और हम अगर इसको आत्मसात करें और उसके लिए जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन एक ऐसा सुंदर माध्यम है जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में बताया जाता है खासकर, कि हम अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को जड़ से कटअप करें। मेडिटेशन का मतलब ही है थोड़ी देर के लिए हम बाहरी चेतना से, बाहरी जड़ तत्वों से, जो परिवेश है, वातावरण है, उससे कटअप करते हैं, और जो सुप्रीम चेतना है, जो सागर है, शांति, स्थिरता, सुख, आनंद, शक्ति, रूहानियत, उसके जो सागर है उनके साथ जोड़े, ताकि जो लॉ ऑफ एंट्रोपी काम कर रहा है, हम जो प्रकृति के साथ, बाहरी दुनिया के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, उसका फिर भरपाई होता रहे, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसको रिवर्स एंट्रोपी कहते हैं, वो एक कैटलिस्ट है। परमात्मा एकमात्र कैटलिस्ट है जो अपरिवर्तनीय है, विदाउट चेंजिंग द सेल्फ, वो सबको चेंज कर लेते हैं। तो वो जो कैपेसिटी है जिसको कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, वो परमात्मा है। जब हम अपने मन बुद्धि को परमात्मा के साथ कर्म करते हुए भी मन बुद्धि से उनको याद करके या उनकी चेतना में रह के हम कर्म करते हैं, जिसको कहा गया है योगा कर्मेषु कौशलम् और योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रहते हुए, परमात्मा की चेतना में रहते हुए, चिंतन में रहते हुए, मनन चिंतन में रहते हुए, याद में रहते हुए कर्म करें, तो क्या होगा कि हमारा सब कर्म जो है सफल होगा, कुशल होगा और सबका मंगल होगा। क्योंकि हम परमात्मा की चिंतन में रह के जो कर्म करते हैं, तो हम जो ऊर्जा जो संचारित करते हैं वातावरण में, वो सबको प्रभावित करता है। और जितना इतना उसका फोर्स, उसका पावर जितना अधिक होगा, सतत अभ्यास के आधार पर, अभ्यास और अनुभव दो चीज है, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, उसके आधार पर उसकी जो ऊर्जा का जो मात्रा है, ऊर्जा का जो वो ज्योमेट्रिकल और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो बढ़ेगा, उस सारे वातावरण को जो शांत शीतल स्थिर कर, जिसको महात्मा बुद्ध ने कहा था कि भाई जो हम अगर शांत होते हैं, हम चाहते हैं कि पहले सब कुछ व्यवस्थित हो जाए तो हम जो है शांति को अनुभव करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल है, जो नेचुरल लॉ है कि हम पहले शांत हो जाएं, तो सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, बसरत हमारे जो शांति की शक्ति इतना बढ़ जाए, इतना मात्रा उसका बढ़ जाए, तो सारे तत्वों जो नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत है, उनको शांत शीतल करने की ताकत, क्षमता जो है हमारे अंदर है, उसको सिर्फ जागृत करना है। मनन चिंतन, परमात्मा की स्मृति, आत्मचिंतन, और उसका जो माध्यम है, जो कनेक्शन है, जो कड़ी है, वो है मेडिटेशन। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को मैं विराम देता हूं, और यही आशा करता हूं कि आप इस मीडिया कॉन्फ्रेंस से ये जो अभ्यास और अनुभव करके यहां से जाएंगे, और इतना शक्ति संचय करके जाएंगे, इतना शक्ति आप प्रिजर्व और कंजर्व करके जाएंगे, आप जिस दुनिया में जा रहे हैं, जो चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सामना करना, उसको फेस करना, उसको फाइट करना, और उसको फिनिश करने में आप कामयाब होंगे, उन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम शांति। धन्यवाद।
अध्यक्ष स्थान से अपने विचारों को कंक्लूज करने के लिए मैं सुशांत भाई का भी धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर आज का हमारा प्लेनरी वन सेशन को हम पूर्ण कर रहे हैं। एक मिनट हम परमात्मा की मदर स्मृति में बैठेंगे, उनको थैंक्स करेंगे इतने सुंदर विचारों को इन महान विभूतियों के द्वारा हमें मिले हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर हम आज के इस दो ढाई घंटे के सेशन से एक विचार को भी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने कार्यस्थल पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तो हमारा यहाँ आना और इस सेशन का हमारा बैठना बहुत बहुत सफल होगा। हम सभी परमात्मा की मधुर स्मृति के बाद इस सेशन को पूर्ण करके बाहर जाएंगे। यहाँ बाहर कैब कॉरिडोर में रिफ्रेशमेंट है, लेमन टी, जूस वगैरह, वो लेकर के फिर हम हॉल में वापस आएंगे। और हमारा अगला सत्र है इनसाइट सेशन, जिसका सुंदर बहुत विषय है कि अप्लाइंग द इनर पावर्स टू मीट प्रोफेशनल चैलेंजेस, व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने हेतु आंतरिक शक्तियों का प्रयोग। बहुत अनुभवी वक्ताओं ने अपने मनन चिंतन से इस विषय को तैयार करके हमारे लिए आए हैं, तो अगले वक्तागण पहुंच गए हैं, हम बहुत जल्दी से जाके फ्रेश होकर पुनः हॉल में लौटेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आज के वक्तागणों का भी मैं संस्था की ओर से, मीडिया विंग की ओर से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। आज के हमारे इस मंचासीन महानुभावों को संस्था की ओर से उनका अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारी पूनम दीदी सम्मानित कर रहे हैं हमारे कुलदीप सिंह जी सर को, शिव पिता परमात्मा का घर का स्मृति चिन्ह भी प्रदान कर रहे हैं, साथ साथ ईश्वरीय भेंट भी राधा कुलदीप सिंह जी को पूनम दीदी अर्पण कर रहे हैं। साथ में है हमारे शिल शुक्ला जी, आपको भी पूनम दीदी सम्मानित कर रहे हैं। ब्रदर अरुण नेठानी जी को मैं भी निवेदन करती हूँ कि कुलदीप दीदी से सम्मान प्राप्त करे शॉल अरुण जी को। संस्था की ओर से शुभिता परमात्मा के घर से आपको ईश्वरीय भेंट प्रदान कर रही है। बहन सुषमा जी से निवेदन करती हूँ, पूनम दीदी से आप ईश्वरीय सौगात प्राप्त करेंगे। भ्राता सुरेश वर्मा जी आपसे भी अनुरोध है, पूनम दीदी से ईश्वरीय सौगात लेंगे। सोमनाथ डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे जी, पूनम दीदी आपको सत्कार कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सभी रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर जाएंगे, रिफ्रेश होकर के तुरंत वापस आएंगे।